आगे सबक देखिए भाई, बाबुल मुस्तामिन व इदा दखल अल मुस्लिमु दार अल हर्बी ताजिरन फला यहिल्लु लहु अन यतअर्रज़ बिशैइन मिन अमवालिहिम वला मिन दिमाइहिम लिअन्नहु ज़मिना अल्ला यतअर्रज़ लहुम बिल इस्तिमान فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام. भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर कोई हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम में दाखिल हुआ और यहां इसने किसी मुसलमान गुलाम को खरीद लिया और फिर इस मुसलमान गुलाम को लेकर वो दारुल हर्ब चला गया, तो इमाम साहिब के नजदीक दारुल हर्ब के अंदर दाखिल होते ही ये मुसलमान गुलाम आजाद हो जाएगा, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि ये गुलाम आजाद नहीं होगा बल्कि ये इसी हर्बी का ममलूक रहेगा. साहिबैन फरमाते हैं वजह यह है कि हर्बी यहां आकर जब मुसलमान गुलाम का मालिक बना तो ये गुलाम इस बात का मुस्तहिक हो गया कि इस पर से हर्बी की मिल्कियत को खत्म किया जाए, और उ हर्बी की मिल्कियत को खत्म करने का एक मुअय्यन तरीका था कि काजी इस हर्बी को हुक्म दे कि इस गुलाम को बेच दो, और अगर वो खुद नहीं बेचता तो फिर काजी उस गुलाम को बेचकर वो समन हर्बी के हवाले कर देता. लेकिन अब तो वह हर्बी मुसलमान गुलाम को लेकर दारुल हर्ब जा चुका है और वहां पर काजी को विलायत हासिल नहीं है. अब उस गुलाम पर से हर्बी की मिल्कियत खत्म करने की कोई सूरत न रही, लिहाजा यह गुलाम अब भी उसी हर्बी का ममलूक रहेगा. जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला फरमाते हैं कि हर्बी एक मुसलमान गुलाम का मालिक हुआ है और मुसलमान गुलाम को काफिर की जिल्लत से छुड़ाना वाजिब है. ये बात मुसलमान गुलाम के लिए जिल्लत का बाइस है कि वो किसी काफिर का गुलाम बनकर रहे, लिहाजा इस काफिर की गुलामी से इसको निजात दिलाना जरूरी है कि इस काफिर की मिल्कियत इस पर से खत्म की जाए. तो जब तक ये मुस्तामिन दारुल इस्लाम में है हम गुलाम को वैसे ही आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि हर्बी को हमने अमान दी है, उसकी जान भी मोहतरम है और उसका माल भी मोहतरम है, लिहाजा यहां पर उसके माल का इवज देकर इस गुलाम को आजाद करवाया जाएगा. लेकिन ये तो गुलाम को लेकर दारुल हर्ब जा चुका, तो जब ये दारुल हर्ब में गया तो इस हर्बी की जान की इस्मत भी खत्म और माल की इस्मत भी खत्म. तो अब इस हर्बी की मिल्कियत इस मुसलमान गुलाम पर से वैसे ही बिला इवज ही खत्म की जाएगी, यानी उस मुसलमान गुलाम को आजाद करवाया जाएगा. लेकिन काजी को तो वहां पर विलायत हासिल नहीं, काजी वहां पर तो मुसलमान गुलाम को आजाद नहीं करवा सकता. तो यहां पर हर्बी की मिल्कियत को खत्म करना यह है हुक्म, और इसकी इल्लत जो है काजी का एताक है कि काजी क्या करे, उस गुलाम को आजाद करवा दे, चुनाचे उस हर्बी की मिल्कियत इस गुलाम पर से खत्म हो जाएगी. लेकिन इस हर्बी की मिल्कियत के खत्म करने की निस्बत काजी के एताक यानी इल्लत की तरफ नहीं हो सकती, और जब हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ न की जा सके तो फिर इल्लत की निस्बत कभी सबब की तरफ की जाती है और कभी फिर शर्त की तरफ की जाती है. तो यहां पर भी इस हर्बी की मिल्कियत के खत्म करने की निस्बत शर्त यानी तबायुने दार की तरफ कर दी जाएगी. आप जानते हैं कि मुसलमान जब माले गनीमत लेकर आते हैं तो जब दारुल इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हर्बियों की मिल्कियत उस पर से खत्म हो जाती है और मुसलमान उसके मालिक बन जाते हैं. मालूम हुआ तबायुने दार की वजह से मिल्कियत खत्म हो जाती है. इसी तरह हर्बी हमारा माल लूट कर लेकर जाते हैं तो जब वो दारुल हर्ब ले जाते हैं तो तब मुसलमानों की उस माल पर से मिल्कियत खत्म हो जाती है. तो मालूम हुआ तबायुने दार जो है वो मिल्कियत खत्म करने के लिए शर्त है. तबायुने दार होगा तो मिल्कियत खत्म होगी, तबायुने दार नहीं तो मिल्कियत भी खत्म नहीं. तो लिहाजा यहां पर भी उस हर्बी की मिल्कियत के खत्म करने की निस्बत जब इल्लत यानी इताक काजी की तरफ नहीं हो सकती तो फिर इसकी निस्बत तो फिर इसकी निस्बत इजाला मिल्कियत के लिए जो शर्त है यानी तबायुन दार उसकी तरफ कर दी जाएगी। लिहाजा यह हरबी इस मुसलमान गुलाम को लेकर जैसे ही दारुल हर्ब में दाखिल होगा तो वह मुसलमान गुलाम खुद बखुद आजाद हो जाएगा। और साहिब हिदाया ने इसकी मिसाल भी जिक्र की थी कि दारुल इस्लाम के अंदर अगर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो काजी दूसरे पर इस्लाम को पेश करता है और जब वो इस्लाम से इनकार कर दे तो ये इस्लाम से इनकार सबब बनता है बैनूनत और जुदाई का और फिर काजी इसकी वजह से दोनों में तफरीक करवा देता है। तो मालूम हुआ दारुल इस्लाम में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो बैनूनत के लिए जो इल्लत है वो तफरीक काजी है कि काजी उनमें तफरीक करवा दे जुदाई करवा दे। लेकिन अगर दारुल हर्ब के अंदर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो वहां पर भी अब बैनूनत चाहिए लेकिन बैनूनत की निस्बत तफरीक काजी की तरफ नहीं की जा सकती क्योंकि वहां पर काजी को विलायत हासिल ही नहीं है, काजी वहां दोनों में तफरीक नहीं करवा सकता। तो फिर इस सूरत के अंदर इस बैनूनत की निस्बत शर्त की तरफ कर दी जाएगी। आप जानते हैं कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक रजई दे दे तो बैनूनत के लिए इद्दत का गुजारना शर्त है, औरत इद्दत गुजारेगी यानी तीन हैज गुजारेगी उसके बाद बैनूनत आ गई जुदाई आ गई अब औरत जहां चाहे निकाह कर सकती है। मालूम हुआ तीन हैजों का गुजरना यह बैनूनत के लिए शर्त है। तो दारुल हर्ब के अंदर जब मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया तो अब बैनूनत की निस्बत काजी की तफरीक की तरफ तो नहीं की जा सकती क्योंकि काजी को वहां विलायत नहीं है। तो वहां बैनूनत की निस्बत फिर बैनूनत की जो शर्त है यानी तीन हैजों का गुजारना उसकी तरफ कर दी जाएगी और वो औरत जब तीन हैज गुजार लेगी तो मियां बीवी के दरमियान जुदाई आ जाएगी। लेकिन अगर तीन हैज गुजरने से पहले वो दूसरा शख्स भी मुसलमान हो गया, खावंद और बीवी में से एक तो पहले ही मुसलमान हो चुका है, अगर दूसरा भी मुसलमान हो गया तो फिर ये इसी तरह मियां बीवी रहेंगे। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर दारुल हर्ब के अंदर कोई गुलाम मुसलमान हो गया और फिर वो भागकर दारुल इस्लाम आ गया या वहीं पर मुसलमानों ने गलबा हासिल कर लिया और उस इलाके को दारुल इस्लाम बना दिया गया या कुफार के गुलाम मुसलमान हो गए और भागकर मुसलमानों के लश्कर में आ गए तो इन तमाम सूरतों में ये गुलाम आजाद हो जाएंगे। और दलील जिक्र की थी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ताइफ के गुलाम मुसलमान होकर निकलकर आए थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन सबको आजाद करार दिया और फरमाया हुम उतकाउल्लाही ये अल्लाह के आजाद करदा हैं, ये अल्लाह के आजाद करदा हैं। और नीस अकली दलील भी साहिब हिदाया ने जिक्र की थी, कहते हैं इसलिए क्योंकि गुलाम जब मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आ गया या मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया तो उसने अपनी जान को महफूज कर लिया, उसने अपनी जान को महफूज कर लिया और यहां पर एक कब्जा है उस मुसलमान गुलाम का अपनी जात पर और एक कब्जा है लश्कर वालों का उसकी जात पर। तो मुसलमान गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा है उसका एतबार करना बेहतर है बजाय इसके कि लश्कर के कब्जे का एतबार किया जाए। वजह यह कि मुसलमान गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा है वह लश्कर के कब्जे पर मुकदम है तो गुलाम के हक में सिर्फ उसी कब्जे को पक्का करने की हाजत है। मुसलमान गुलाम को जो अपनी जात पर पहले से ही कब्जा हासिल है सिर्फ उसी कब्जे को पक्का करने की जरूरत है और अगर लश्कर का कब्जा इस पर साबित किया जाए तो वो इब्तिदाअन एक नया कब्जा साबित करना पड़ेगा और ताकीद जो है वो आसान होती है इब्तिदा के मुकाबले में। ताकीद के अंदर एक चीज पहले से साबित है उसी को पक्का करार देना है और इब्तिदा के अंदर एक नई चीज को साबित करना पड़ता है। तो ताकीद आसान है इब्तिदा के मुकाबले में क्योंकि ताकीद में कोई नई चीज नहीं साबित करना पड़ती बल्कि उसी साबित शुदा चीज को पुख्ता और पक्का करार देना पड़ता है। तो लिहाजा इस मुसलमान गुलाम का अपनी जात पर कब्जा मुकदम है और उसी को पक्का करार दे दिया जाएगा भाई, उसी को पक्का करार दे दिया जाएगा और यह आजाद शुमार होगा भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबुल मुस्तामिन, ये बाब है मुस्तामिन के बयान में। आप जानते हैं कि कोई हरबी अमान लेकर दारुल इस्लाम में आ जाए तो इसको मुस्तामिन कहते हैं, यानी अमान लेने वाला। मुस्तामिन का क्या माना? अमान लेने वाला। इसी तरह याद रखो कि मुसलमान भी तिजारत वगैरह की गरज से दारुल हर्ब जाते हैं तो वो भी अमान लेकर जाते हैं, तो कोई मुसलमान अमान लेकर दारुल हर्ब चला जाए तो वो भी मुस्तामिन है। हरबी दारुल इस्लाम में अमान लेकर आए वो भी मुस्तामिन, और कोई मुसलमान अमान लेकर दारुल हर्ब जाए वो भी मुस्तामिन है। तो इस बात में हम मुस्तामिन के अहकाम बयान फरमाएंगे। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि मुसलमान जब अमान लेकर दारुल हर्ब गया है तो उसने गोया उन लोगों को जमानत दे दी है कि मैं तुम्हारी जान और माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे तो दारुल हर्ब वालों के साथ हम हालत जंग में हैं, लेकिन जब मुसलमान अमान लेकर वहां जाता है तो वो उनको जमानत दे रहा है कि मैं यहां तुम्हारी जान और माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लिहाजा मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि जब वो अमान लेकर दारुल हर्ब जाए तो वहां किसी चीज को नुकसान पहुंचाए और उनको धोखा दे। मुसलमान के लिए उनको धोखा देना जायज नहीं है, क्योंकि अगर यह उनके माल को नुकसान पहुंचाएगा या उनमें से किसी की जान को नुकसान पहुंचाता है, यह तो मुसलमान धोखा दे रहा है, उसने एक वादा किया था, वादा खिलाफी कर रहा है, और धोखा देना यह तो हराम है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बाब उल मुस्तामिनी, ये बाब है मुस्तामिन के बयान में। व इदा दखल अल मुस्लिमु दारल हर्बि ताजिरन, और जब कोई मुसलमान दारुल हर्ब में ताजिर होकर दाखिल हुआ, फला यहिल्लु लहु अन यतअर्रज बिशैइन मिन अमवालिहिम वला मिन दिमाइहिम, तो उस मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि किसी भी चीज से तारुज करे, उनके अमवाल और उनके खूनों में से, उनके अमवाल और खून में से किसी चीज के साथ तारुज करना मुसलमान के लिए जायज नहीं। याद रखना ये मिन अमवालिहिम वला मिन दिमाइहिम, ये शय उनका बयान है, ये बयान है। ये मिन किस लिए आता है? बयान के लिए। मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो किसी चीज के साथ तारुज करे, और फिर किसी चीज से क्या मुराद है? कहते हैं मिन अमवालिहिम वला मिन दिमाइहिम, यानी उनके माल और उनके जो खून हैं। तो ये जो मिन अमवालिहिम और वला मिन दिमाइहिम आया, ये बयान है शय उनका, लिहाजा तर्जमे के अंदर शय उन की जगह इसी बयान को ले आए। तो यूं तर्जमा करें, फला यहिल्लु लहु अन यतअर्रज बिशैइन मिन अमवालिहिम वला मिन दिमाइहिम, तो मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो कुफार के मालों और खूनों के साथ तारुज करे। तर्जमा समझ में आ गया। لِأَنَّهُ زَمِينَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِالِاسْتِيمَانِ، لِأَنَّهُ زَمِينَ، کیونکہ مسلمان نے ان کو ضمانت دی ہے، أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ، کہ وہ ان سے تعرض نہیں کرے گا، یعنی کسی چیز میں उनके जान और माल को कोई नुकसान नहीं देगा, कि उसने जमानत दी है अल्लाह यतअर्रज लहुम कि वो उनसे तारुज नहीं करेगा, बिल इस्तीमानी अमान लेने की वजह से। मुसलमान ने जमानत दी है बिल इस्तीमानी, किसकी वजह से? अमान लेने की वजह से उसने गोया जमानत दी है उनको। फतअर्रुजु बादा ज़ालिका यकूनु गदरन, तो उसके बाद यानी अमान लेने के बाद फिर तअर्रुज करना ये गदर है, ये धोखा है। गदर किसे कहते हैं? धोखा और अहद शिकनी करना, मुआहदे को तोड़ना। तो कहते हैं फतअर्रुजु बादा ज़ालिका यकूनु गदरन, तो उसके बाद तअर्रुज करना जो है वो धोखा और अहद शिकनी है। वल गदरु हरामुन, और धोखा तो हराम है, यूं तर्जमा कर लें, वल गदरु हरामुन और अहद शिकनी तो हराम है। इल्ला इदा गदर बिहिम मलिकुहुम, मगर इस सूरत में कि जब कुफार का बादशाह इनसे बदअहदी करे, वो अपना मुआहदा तोड़ दे। भाई मुसलमान वहां गया है अमान लेकर गया है, गोया मुसलमान में और उनमें मुआहिदा हो गया कि वो मुसलमान की जान और माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मुसलमान उनके जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मुसलमान के लिए अहद शिकनी जायज नहीं, लेकिन अगर उनकी तरफ से अहद शिकनी हुई, यानी उनका बादशाह अहद शिकनी करता है, तो फिर इस सूरत में मुसलमान उनके जान और माल से तारुज कर सकता है। भाई तो कहते हैं इल्ला इदा गदर बिहिम मलिकुहुम, मगर यह कि मुसलमानों के साथ उनका बादशाह जो है वो अहद शिकनी करे। किस तरह अहद शिकनी करेगा, उसकी सूरत भी बतला रहे हैं कि बादशाह उनका अहद शिकनी करे। फअखज़ा अमवालहुम, तो मुसलमानों का माल ले ले। औ हबसहुम, या मुसलमानों को कैद कर दे। औ फअला गैरुहु बिइल्मिल मलिकी, या बादशाह के अलावा कोई और जो है इस तरह करे, बिइल्मिल मलिकी, बादशाह के जानते हुए। यानी कुफार के बादशाह को इलम है और कोई शख्स मुसलमानों को जानी या माली नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर इस सूरत में मालूम हुआ उन कुफार ने अहद शिकनी की है भाई, तो अब मुसलमान भी उस मुआहदे का पाबंद नहीं, अब वो इनके जान और माल से तारुस कर सकता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, इल्ला इदागा दरा बिहिम मलिकुहुम, मगर ये कि कुफार का बादशाह मुसलमानों के साथ अहद शिकनी करे, फअखज़ा अमवालहुम औ हबसहुम, तो मुसलमानों के मालों को वो ले ले, औ हबसहुम या मुसलमानों को वो कैद कर दे, औ फअला गैरुहु बिइल्मिल मलिकी, या बादशाह के अलावा कोई और करे बादशाह के जानते हुए, वलम यमनाहु, और हाल यह है कि बादशाह उनको मना नहीं करता, बादशाह के जानते हुए कोई और इस तरह कर रहा है और बादशाह उनको मना नहीं कर रहा, तो फिर इसको इजाजत है तारुस की। लिअन्नहुम हुमुल लदीन नकज़ुल अहदा, इसलिए क्योंकि वही हैं जिन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया है। नकज का क्या माना? तोड़ना। लिअन्नहुम हुमुल लदीन नकज़ुल अहदा, इसलिए क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया है। बिखिलाफिल असीरी, असीर कहते हैं कैदी को, बखिलाफ मुसलमान कैदी के, भाई अगर कोई मुसलमान कैदी उनके पास है, वो यहां से पकड़ कर ले गए थे और फिर उस कैदी को वो छोड़ देते हैं, तो इस कैदी के लिए उनके जान और माल से तारुस जायज है जी। इस कैदी के लिए उनके जान और माल से तारुस जायज है, इसलिए क्योंकि इसने उनके साथ कोई मुआहिदा नहीं किया हुआ अमान वाला। हां, अगर उन्होंने कैदी को छोड़ते हुए उसके साथ मुआहिदा किया कि तुम यहां किसी के जान या माल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिर उस मुसलमान कैदी पर भी यह लाजिम हो जाएगा। तो कहते हैं बेखिलाफ इल असीरी, बखिलाफ कैदी के, लिअन्नहु गैरु मुस्तामिन, इसलिए क्योंकि वो तो मुस्तामिन नहीं है। फयुबाहु लहु तारुजु, तो उसके लिए तारुज करना मुबाह है। व इन अतलकूहु तौअन, अतलका युतलिकु इतलाक का माना है आजाद करना, तो कहते हैं फयुबाहु लहु तारुजु, तो उस मुसलमान कैदी के लिए उनसे तारुज जायज होगा। व इन अतलकूहु तौअन, अगरचे उन्होंने उसको खुशी से आजाद किया हो, चाहे वो खुशी से ही कैदी को आजाद कर दें, फिर भी मुसलमान कैदी के हाथ जो माल आए या जिसको वो कत्ल कर सके वो उसके लिए जायज है भाई, क्योंकि दारुल हर्ब वालों से हम हालत जंग में है भाई। तो कहते हैं वह इन अतलकूहु तौअन, अगरचे वो मुसलमान कैदी को खुशी से छोड़ दें, फ इन गदारा बिहिम, फिर अगर उसने उनके साथ अहद शिकनी की, आनी ताजिरा यानी के ताजिर, साहिब हिदायत बतलाना चाहते हैं कि ये गदारा की जमीर किसको लौट रही है, ताजिर को, यानी किसी मुसलमान ताजिर ने उनके साथ गद्दारी की। भाई सूरत यह है, एक मुसलमान ताजिर अमान लेकर दारुल हर्ब गया है, तो जब इसने अमान ली है तो गोया जमानत दे दी कि मैं तुम्हारे जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसने वहां पर अहद शिकनी की और किसी का माल छीन कर आ गया, किसी का माल छीन कर ले आया दारुल इस्लाम में, तो ये इसने गद्दारी की है, लिहाजा ये इस माल का मालिक तो बन जाएगा, क्योंकि दारुल हर्ब वालों का माल हमारे लिए मुबाह है, तो माल का तो मालिक बन जाएगा, लेकिन इस मिल्कियत के अंदर खबासत आ गई, खराबी और बुराई आ गई कि इसने अहद शिकनी की है, इसने धोखा देकर इस माल पर कब्जा किया है, लिहाजा इसको अब यह माल सदका करना चाहिए, यह माल इसके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं फइन गदरा बिहिम आनी ताजिरा, और अगर उनके साथ गद्दारी की यानी के ताजिर ने, फअखज़ा शैअन, तो उसने कोई चीज ले ली, वखरजा बिही, और इसको लेकर निकल आया यानी दारुल इस्लाम ले आया, मलकहु मिल्का महजूरन, तो वो ममनू मिल्कियत के साथ इसका मालिक हो जाएगा, तो वो ममनू मिल्कियत के साथ उसका मालिक हो जाएगा। ये यूं तर्जमा कर लीजिए, मलकहु मिल्का महजूरा, उस चीज पर इसकी ममनू मिल्कियत आ जाएगी, उस चीज पर इसकी ममनू मिल्कियत यानी हराम मिल्कियत आ जाएगी। लिवुरूदिल इस्तिलाए अला मालिम मुबाहिन, यहां से इल्लत जिक्र कर रहे हैं कि ताजिर अगर धोखा देकर कोई चीज लाता है तो मालिक क्यों बनेगा, और फिर यह मिल्कियत हराम क्यों है, तो बतलाएंगे कि मालिक इसलिए बनेगा क्योंकि हर्बियों का माल हमारे लिए मुबाह है, आप जानते हैं कि माल महफूज तब होगा जब इसको दारुल इस्लाम मुंतकिल कर लिया जाए। तो हरबियों का माल हमारे लिए मुबाह, तो मुबाह माल पर मुसलमान ताजिर ने कब्जा किया है, लिहाजा मालिक बन जाएगा। अलबत्ता यह मिल्कियत हराम है, ममनू है, इसलिए क्योंकि इसने अहद शिकनी करके इस माल पर कब्जा किया है। तो यह माल हराम तो हुआ उसके लिए, लेकिन हराम ली गैर ही हुआ, यानी गद्दारी की वजह से, धोखा देने की वजह से। तो कहते हैं लिवुरूद इस्तीला अला माल मुबाहिन, अब ये मिल्कियत की वजह बयान कर रहे हैं कि मालिक क्यों बनेगा। कहते हैं लिवुरूद इस्तीला अला माल मुबाहिन, इस वजह से कि गलबा आ गया है माल मुबाह पर, इल्ला अन्नहु हसला बिसबबिल गदरी, मगर ये कि ये जो गलबा आया है ये अहद शिकनी की वजह से आया है। फौजब जालिका खूब सनफी ही, तो इसने उस मिल्कियत के अंदर खूब साबित कर दिया, उस मिल्कियत में खबासत आ गई यानी उसमें खराबी आ गई। फयु उमरू भी तसदुकी भी ही, तो इस मुसलमान को हुक्म दिया जाएगा उसके सदका करने का, मुसलमान को कहा जाएगा कि ये सदका करे, उसके लिए ये इस्तेमाल करना जायज नहीं है। और याद रखो ये जो उस मुसलमान ताजिर को हुक्म दिया जाएगा सदका करने का, इससे मुराद है फतवा, उसको फतवा ये दिया जाएगा, काजी नहीं उसको हुक्म देगा, यानी यूं को उसको दयानतन हुक्म है कि ये माल सदका करे, कजाअन ये हुक्म नहीं, क्योंकि मालिक तो बहरहाल ये बन चुका है भाई। तो कहते हैं फयु उमरू भी तसदुकी भी ही, तो उसको दयानतन उसके सदका करने का हुक्म दिया जाएगा। वहाजा, और ये इस वजह से, तो यहां सवाल पैदा होता है ना कि ये कब्जा जब ममनू है, इसने तो अमान लिया हुआ था, तो फिर ये मिल्कियत का सबब कैसे बनेगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि ममनू अल गैर ही जो होता है वो मिल्कियत का सबब बन जाता है। तो कहते हैं वहाजा, और ये ममनू मिल्कियत का होना इस वजह से है, ले अनल हजरा ली गैर ही, इसलिए क्योंकि गैर की वजह से जो मुमानात होती है, ला यमनाउन इकाद सबबी, ये मिल्कियत के सबब को मुनाकिद होने से नहीं रोकती। अला मा बयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि महजूर ली गैर ही की वजह से अर्ज मकसूबा के अंदर नमाज हो जाती है, तो महजूर ली गैर ही की वजह से मिल्कियत जो अदना है वो क्यों नहीं साबित होगी भाई। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए, ले अन्नल हज़रा ली गैर ही, हजर भाई ज़ुआ के साथ है, ले अन्नल हज़रा ली गैर ही, इसलिए क्योंकि गैर की वजह से जो मुमानअत होती है, ला यमनाउ, वो मना नहीं करती, इनइक़ाद सबबी, मिल्कियत के सबब के मुनाकिद होने को, मिल्कियत के सबब के मुनाकिद होने को वो मना नहीं करती। अला मा बयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। आगे देखिए, व इजा दखल अल मुस्लिमु दार अल हर्बी बि अमानिन फअदानहु हर्बियुन औ अदानहु हर्बियन औ गसब अहदुहुमा साहिबहु सुम्मा खरज इलैना वस्तअमन अल हर्बियु लम युक्ज़ा लिवाहिदिन मिन्हुमा अला साहिबिही बिशैइन। ये सारा मतन है भाई। सूरत मसला यह है कि एक मुसलमान दारुल हर्ब गया अमान लेकर, और वहां जाकर इसने एक हर्बी के साथ देन वाला मामला किया, यानी कोई चीज हर्बी को उधार बेच दी, हर्बी ने अब उधार देना है, वो देन हर्बी के जिम्मे है, या हर्बी ने मुसलमान को कोई चीज बेची है देन के बदले, मुसलमान ने उसका देन अदा करना है। तवज्जो है, तो मुसलमान और हर्बी के दरमियान देन वाला मामला हुआ, दोनों में से किसी एक पर देन आ गया, चाहे मुसलमान पर आए चाहे हर्बी पर आए, या गसब वाला मामला पाया गया मुसलमान और हर्बी के दरमियान, मुसलमान ने हर्बी का माल छीन लिया या हर्बी ने मुसलमान का माल छीन लिया, और फिर मुसलमान दारुल इस्लाम आ गया और वह हर्बी भी अमान लेकर दारुल इस्लाम आ गया, तो क्या काजी इनके दरमियान फैसला करेगा अगर ये काजी के पास चले जाते हैं। तवज्जो है, मुसलमान और हर्बी के दरमियान देन वाला मामला हुआ दारुल हर्ब में, या मुसलमान और हर्बी के दरमियान गसब वाली सूरत पेश आ गई दारुल हर्ब में, फिर ये दोनों यहां आ गए, मुसलमान का तो ये वतन है, मुसलमान अपने वतन वापस आ गया, हर्बी भी अमान लेकर आ गया, फिर इन दोनों में से कोई एक काजी के पास चला जाता है, मुसलमान काजी के पास चला गया कि काजी साहब इसने मेरा दैन देना है या इसने मेरी चीज गसब की थी, या वो मुस्तामिन जो है वो काजी के पास चला गया कि काजी साहब इस मुसलमान ने मेरा दैन देना है या इसने मेरी चीज गसब की थी, तो क्या काजी इनके दरमियान फैसला कर सकता है या नहीं कर सकता? कहते हैं नहीं, काजी इनके दरमियान फैसला नहीं कर सकता, काजी इनके दरमियान फैसला नहीं कर सकता। वजह यह कि जिस वक्त दोनों के दरमियान यह दैन वाला मामला हुआ था, यह जिस वक्त यह माल गसब किया था एक शख्स ने, तो उस मकाम पर काजी को विलायत ही हासिल नहीं थी, क्योंकि यह मामला दारुल हर्ब में हुआ था। तो जहां यह मामला पेश आया वहां भी काजी को विलायत हासिल नहीं, और अब जब यह दोनों काजी के पास आए हैं, इस वक्त अगरचे काजी को इन पर विलायत हासिल है, लेकिन वो बात है माजी की भाई, तो मुसलमान उस पर तो काजी का हुक्म मानना लाजिम है, मुसलमान पर तो काजी का हुक्म मानना लाजिम है, चाहे माजी का हो चाहे हाल का हो। लेकिन मुस्तामिन अमान लेकर आया है, उसने तो सिर्फ मुस्तकबिल के अंदर हमारे अहकाम को मानने का इल्तिजाम किया है। जब वो दाखिल हो रहा था उस वक्त उसने कहा आइंदा जब तक मैं दारुल इस्लाम में हूं मैं आपके अहकाम मानता रहूंगा, लेकिन माजी की चीजों के अंदर तो उसने हमारे अहकाम मानने का इल्तिजाम नहीं किया, और ये मामला तो माजी का है भाई। तो लिहाजा जिस वक्त मामला हुआ था उस वक्त तो काजी को किसी पर भी विलायत नहीं, ना मुसलमान पर ना हरबी पर, क्योंकि यह मामला दारुल हर्ब में हो रहा था। और इस वक्त अगरचे मुसलमान पर काजी को विलायत हासिल है, लेकिन मुस्तामिन पर विलायत हासिल नहीं माजी के एतबार से, क्योंकि वह मामला माजी में पेश आया था, लिहाजा काजी इन दोनों के दरमियान फैसला नहीं कर सकता। तो कहते हैं वह इदा दखल अल मुस्लिमु दार अल हर्बी भी अमानिन, और जब कोई मुसलमान दारुल हर्ब में दाखिल हुआ अमान के साथ, फादानहु हर्बियुन औ अदानहु हर्बियन। भाई देखो यहां मतन में दो लफ्ज आ रहे हैं, फादानहु हर्बियुन औ अदानहु हर्बियन, तो अदान युदीन ये बाबे इफाल है और अदान ये बाबे इफ्तेआल है। असल में क्या था, अद तायाना, अद तायाना, फिर ता को भी दाल करके दामे इदगाम कर दिया गया और या को अलिफ से बदल दिया गया, तो अदाना हुआ। बात समझ में आ गई? तो शारहीन लिखते हैं कि अहले लुगत तो दोनों में फर्क नहीं करते, अदाना का भी वही माना है जो अदाना का है। अदाना का माना है कर्ज लेना या कर्ज देना, कर्ज लेना या कर्ज देना, दोनों माना आते हैं। तो अहले लुगत जो है वो अदाना और अदाना इन दोनों में फर्क नहीं करते, जबकि फुकहा इनमें फर्क करते हैं। अदाना युदीनु इदानतन का माना है दूसरे को कोई चीज दैन के बदले बेचना, और इदाना बाबे इफ्तेआल से हो तो इसका माना है दैन को कबूल करना। देखिए तर्जमे के साथ बात और वाजे हो जाएगी। देखिए कहते हैं वइदा दखल अल मुस्लिमु दार अल हर्बी बि अमानी, और जब कोई मुसलमान दारुल हर्ब में अमान के साथ दाखिल हुआ, फादानहु हर्बियुन, तो एक हर्बी ने इसके साथ दैन वाली बैअ कर ली। तो अदाना का फाइल क्या है, हर्बियुन, यानी हर्बी ने कोई चीज बेची मुसलमान को दैन के बदले में, कि मुसलमान एक महीने बाद पैसे अदा करेगा, यह माल उसके जिम्मे दैन है। तो ये फाइल कौन है, हर्बी। मालूम हुआ ये इदानत वाला फेल किसने किया है, हर्बी ने, तो मुसलमान के ऊपर दैन आ गया। तो कहते हैं फअदानहु हर्बियुन, तो एक हर्बी ने मुसलमान को कोई चीज दैन के बदले बेची, औ अदानहु हर्बियन अविदानहु हर्बियन, या मुसलमान ने दैन कबूल कर लिया हर्बी से। इदाना का क्या माना है, दैन कबूल करना, किसने दैन कबूल किया है, इदाना हुआ, मुसलमान ने दैन कबूल कर लिया, हर्बियन किस पर, हर्बी पर, यानी हर्बी ने मुसलमान को दैन देना है। तो बात एक ही है, दोनों के दरमियान बै वाली बात हुई है, लेकिन अदाना के माने हैं दूसरे को दैन पर कोई चीज बेचना, और इदाना का माना है दैन कबूल करना। भाई आगे देखिए, औ गसब अहदुहुमा साहिबहू, या दोनों में से एक ने गसब कर लिया साहिबहू अपने साथी को, यानी अपने साथी के माल को। भाई गसब तो माल का होता है, आजाद आदमी का गसब नहीं होता। तो यहां आया इबारत पे नजर रखिए, औ गसब अहदुहुमा, या दोनों में से एक ने गसब कर लिया साहिबहू अपने साथी को, आई माला साहिबी ही, अपने साथी के माल को गसब कर लिया। तो यहां साहिबहू से पहले माल का लफ्ज मुजाफ महजूफ है भाई। कहते हैं औसब अहदुहुमा साहिबहू, या दोनों में से एक ने अपने साथी को यानी उसके माल को गसब कर लिया। सुम खरजा इलैना, फिर वो मुसलमान हमारी तरफ निकल आया यानी दारुल इस्लाम आ गया। वस्तअमन अल हरबी, और हरबी ने भी अमान ले लिया यानी वो भी अमान लेकर दारुल इस्लाम आ गया। लम युक्ज़ल वाहिद मिनहुमा, तो किसी एक के हक में भी फैसला नहीं किया जाएगा। अला साहिबी ही, उसके साथी के खिलाफ विषय इन किसी चीज का, यानी चाहे इदानत वाला मामला हो चाहे गसब वाला मामला हो, दोनों सूरतों में से किसी एक के अंदर भी काजी फैसला नहीं कर सकता। तो कहते हैं लम युक्ज़ल वाहिद मिनहुमा अला साहिबी ही विषय इन, तो इन दोनों में से किसी एक के हक में भी फैसला नहीं किया जाएगा उसके साथी के खिलाफ किसी चीज का। अमल इदानतु फली अन्नल कजा आयाता मिदुल विलायता, अमल इदानतु, और वो जो देन पर ब्या का मामला है, इदानत किसे कहते हैं, देन के बदले ब्या करना, और चाहे ये इदानत वाला मामला मुसलमान की तरफ से हो चाहे हरबी की तरफ से, दोनों इसमें दाखिल हैं। कहते हैं अमल इदानतु, और बाकी वो जो देन पर ब्या का मामला है, फली अन्नल कजा आयातमिदुल विलायता, इसलिए क्योंकि कजा जो है उसका एतमाद विलायत पर होता है। कजा का एतमाद किस पर होता है, विलायत पर। काजी को विलायत है तो वो फैसला कर सकता है, विलायत नहीं तो वो फैसला भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं फली अन्नल कजा आयातमिदुल विलायता, इसलिए क्योंकि कजाए काजी जो है उसका एतमाद विलायत पर होता है। वला विलायता वक्तल इदानती असलन, और काजी को कोई विलायत हासिल नहीं है वक्तल इदानती, देन वाली बैग के वक्त में, असलन सिरे से ही। असलन ऐ कतअन भाई, जिस वक्त ये इदानत का मामला हुआ उस वक्त तो वो मुसलमान और हरबी दोनों दारुल हर्ब में थे, तो ना मुसलमान पर काजी को विलायत हासिल है और ना हरबी पर। तो ये माना है कि उस वक्त सिरे से काजी को विलायत ही नहीं हासिल, ना मुसलमान पर विलायत है और ना हरबी पर। तो कहते हैं वला विलायत वक्तल इदानती असला, और इदानत के वक्त तो काजी को विलायत ही हासिल नहीं है असलन ऐ कतअन। वला वक्तल कजा अलल मुस्तअमिनी, तो मालूम हुआ इदानत के वक्त भी काजी को विलायत नहीं, और अब अगर काजी फैसला करता है तो इस वक्त भी इसको मुस्तामिन पर विलायत नहीं। भाई कैसे विलायत नहीं है, मुस्तामिन दारुल इस्लाम आया हुआ है, उसने हमारे अहकाम मानने का इल्तिजाम किया है। कहते हैं भाई इदानत का मामला माजी के अंदर हुआ था और अमान लेकर इसने मुस्तकबिल में हमारी बातें मानने का इल्तिजाम किया है, माजी के अंदर इस्लामी अहकाम को मानने का इल्तिजाम नहीं किया। तो कहते हैं वला वक्त अल कजा अलल मुस्तअमिनी, और काजी के फैसले के वक्त जो है विलायत हासिल नहीं है उसको मुस्तामिन पर। लिअन्नहु मल्तज़मा हुक्मल इस्लामी फीमा मज़ा मिन अफ़ालिही, लिअन्नहु मल्तज़मा हुक्मल इस्लामी, इसलिए क्योंकि मुस्तामिन ने इस्लामी हुक्म मानने को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। फीमा मज़ा मिन अफ़ालिही, वो जो उसके अफ़ाल गुजर चुके हैं उनके अंदर। वह इन्ना मल्तज़मा ज़ालिका फिल मुस्तक़बिली, और उसने इस्लामी अहकाम को अपने ऊपर लाजिम किया है मुस्तक़बिल में। वह अम्मल ग़स्बु, और बाकी ग़स्ब जो है भाई ये तो इदानत वाली सूरत थी उसमें काजी फैसला नहीं कर सकता, अब गसब वाली सूरत है उसमें भी काजी फैसला नहीं कर सकता। कहते हैं वह अम्मल गसबू, और बाकी गसब जो है, फली अन्नहु सारा मिल्कन लिल्लदी गसबहू, इसलिए क्योंकि वो माले मगसूब मिल्कियत बन गया उस शख्स की जिसने उसको गसब किया था। भाई दारुल हर्ब जो है वहां तो माल महफूज नहीं, दारुल हर्ब के अंदर तो माल महफूज नहीं, दारुल इस्लाम जब लाएंगे तब माल महफूज होगा। तो दारुल हर्ब के अंदर चाहे हरबी ने मुसलमान के माल पर कब्जा किया या मुसलमान ने हरबी के माल पर कब्जा किया, तो वो माले मुबाह पर कब्जा है, और माले मुबाह पर जब कोई कब्जा करता है तो वो उसका मालिक बन जाता है। लिहाजा गसब की सूरत में दोनों मालिक बन चुके हैं। अगर मुसलमान ने गसब किया था तो मुसलमान हरबी के माल का मालिक बन चुका है, और अगर हरबी ने गसब किया था तो हरबी मुसलमान के माल का मालिक बन चुका है। भाई कहते हैं फली अन्नहु सारा मिल्कन लिल्लदी गसबहू, इसलिए क्योंकि वो माले मगसूब मिल्कियत बन गया उस शख्स की जिसने उसको गसब किया था। वस्तौला अलैही, और वो शख्स जिसने इस पर गलबा पाया था। ये वस्तौला अलैहि, इसका आतफ गसबहू पर है और गसबहू जो है सिला है मौसूल का, तो ये भी इस्तौला अलैहि ये भी सिला है मौसूल का। फिर तर्जमा देख लीजिए, फली अन्नहु सारा मिल्कन लिल्लदी गसबहू वस्तौला अलैहि, इसलिए क्योंकि वो माले मकसूब मिल्कियत बन गया उस शख्स का जिसने इसको गसब किया और इस पर गलबा पा लिया। लिमुसादफतिही मालन गैर मासूमिन, बवजह इसके कि इस गलबे ने मुलाकात की है मालन गैर मासूमिन, ऐसे माल से जो गैर महफूज था। अलामा बयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि दारुल हर्ब के अंदर माल महफूज नहीं होता। भाई तो कहते हैं लिमुसादफती ही मालन गैर मासूमिन, इस वजह से कि इस गलबे ने यानी इस इस्तीला ने मुलाकात की है माले गैर मासूम से। आप पढ़ चुके हैं इस्तीला माले मुबाह पर आए तो वो मोतबर है, वो मिल्कियत का फायदा देगा, तो यहां पर भी इस्तीला किस पर हुआ है माले गैर मासूम यानी माले मुबाह पर। यह माना है लिमुसादफती ही मालन गैर मासूमिन, इस वजह से कि इस्तीला ने मुलाकात की है माले गैर महफूज से। अलामा बयन्नाहू, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। वकदालिक लौकाना हर्बियैन फअला दालिक, भाई ये दूसरी सूरत आ गई। पहली सूरत क्या थी कि एक मुसलमान दारुल हर्ब गया था और ये इदानत और गसब वाला मामला मुसलमान और हर्बी के दरमियान हुआ। अब दूसरी सूरत जिक्र कर रहे हैं कि ये इदानत या गसब वाला मामला दो हर्बियों में हुआ और फिर दोनों अमान लेकर दारुल इस्लाम आ गए, दोनों मुस्तामिन बन गए। अब ये अगर इनमें से कोई एक काजी के पास जाता है तो क्या काजी फैसला कर सकता है इन दोनों के दरमियान? कहते हैं नहीं, यहां पर भी मामला उसी तरह है, क्योंकि जब इन्होंने मामला किया था उस वक्त काजी को विलायत हासिल नहीं थी और अब जब ये अमान लेकर यहां आ गए हैं तो उसके अंदर भी वो इन्होंने मुस्तकबिल के अंदर इस्लामी अहकाम मानने का इल्तिजाम किया है, माजी की बातों पर तो उन्होंने इस्लामी अहकाम को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। भाई तो कहते हैं वकदालिका लौकाना हर्बियैन फअला ज़ालिका, और इसी तरह है यानी काजी फैसला नहीं कर सकता अगर वो दो हर्बी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। सुम्मा खराजा मुस्तामिनैनी, फिर ये दोनों मुस्तामिन होकर दारुल इस्लाम निकल आए तो भी इसी तरह यानी काजी फैसला नहीं कर सकता। लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कह दिया कि कजा की बुनियाद विलायत पर होती है और काजी को उस वक्त विलायत हासिल नहीं थी। भाई आगे देखिए वलौ खराजा मुस्लिमैनी, अब तीसरी सूरत आ गई कि यही मामला दो हर्बियों के दरमियान हुआ, इदानत वाला या गसब वाला, लेकिन फिर वो हर्बी मुसलमान हो गए और मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आ गए, तो क्या अब काजी इनके दरमियान फैसला कर सकता है? तो कहते हैं भाई अब काजी वो सिर्फ इदानत वाले मामले में फैसला कर सकता है, गसब वाले मामले में फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि जब गसब किया था वो मालिक बन गए थे भाई, तो अलबत्ता इदानत वाले मामले में फैसला कर सकता है क्योंकि वो जो दैन का मामला दोनों के दरमियान हुआ था वो दोनों की बाहमी रजामंदी से हुआ था, तो उसमें काजी फैसला कर सकता है। कहते हैं वलौ खराजा मुस्लिमैनी, और अगर ये दोनों हर्बी जिनके दरमियान इदानत या गसब वाला मामला हुआ है, वलौ खराजा मुस्लिमैनी, अगर ये दोनों हर्बी मुसलमान होकर निकल आए, कुजिया बिदैनी बैनहुमा, तो इनके दरमियान दैन का फैसला कर दिया जाएगा। वलम युक्ज़ा बिल गस्बी, और गसब का फैसला नहीं किया जाएगा। अब वजह जिक्र करने लगे, मैंने वजह बयान कर दी। कहते हैं अमल मुदायनतु, मुदायनत कहते हैं बाहम एक दूसरे के साथ देन वाला मामला करना। कहते हैं अमल मुदायनतु, तो देन वाला जो मामला है काजी उसका फैसला करेगा। फली अन्नहा वकअत सहीहतन, इसलिए क्योंकि वो मामला सही होकर वाके हुआ था। लिवुकूइहा बितराजी, इस वजह से कि वो बाहमी रजामंदी से वाके हुआ था। वल विलायतु साबितुन हालत अल कजाई, और काजी को विलायत साबित है कजा की हालत में। भाई इस वक्त तो दोनों मुसलमान हैं, इस्लामी अहकाम इन पर लाजिम हैं, तो लिहाजा इस वक्त काजी उस मुदायनत के मामले का फैसला कर सकता है। तो ये माना है वल विलायतु साबितुन हालतल कजाई, और विलायत जो है वो साबित है फैसले की हालत में, लिल्तिजामी ही मल अहकाम बिल इस्लामी, इस वजह से कि दोनों ने इस्लामी अहकाम का इल्तिजाम कर लिया है, दोनों मुसलमान हो गए हैं। वह अमल गसब, बाकी गसब का फैसला काजी नहीं कर सकता, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वह अमल गसब और बाकी गसब जो है फलीमा बैन्ना, तो वो उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि अन्नहू मलका हूं कि वो गासिब उस माल का मालिक बन चुका है। वला खुबसफी मिलकिल हरबी, ये यहां एतराज होता है कि आपने हमें बताया था मुसलमान ताजिर अगर दारुल हर्ब जाए और वहां धोखा करके किसी का माल छीन कर ले आए तो माल के अंदर खबासत आ गई, लिहाजा उसको फतवा दिया जाएगा कि इस माल को सदका कर दे। तो यहां आप हमें कह रहे हैं ये दो हरबी जिनके दरमियान गसब की सूरत पेश आ गई और फिर ये दोनों मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आ गए हैं, तो इसमें काजी फैसला नहीं कर सकता, भाई इसके अंदर भी उसको कम अज कम फतवा तो दिया जाएगा कि जिसने माल गसब किया है वो उसको सदका करे, क्योंकि उस मिल्कियत के अंदर खबासत आ चुकी है। कहते हैं नहीं भाई, जिस वक्त इसने कब्जा किया था उस वक्त यह हरबी था और हरबी के माल के अंदर तो खबासत नहीं है, हरबी तो खुद ही काफिर था, तो उसके माल में खबासत का क्या माना भाई। तो कहते हैं वला खूब सफी मिलकिल हरबी, ये और हरबी की मिल्कियत में कोई खबासत और कोई खराबी नहीं है। हता यु उमारा बिर रद्दी, यहां तक कि इसको हुक्म दिया जाए उसको लौटाने का। व इदा दखल अल मुस्लिमु दार अल हरबी बि अमानिन, और जब कोई मुसलमान दारुल हर्ब में दाखिल हुआ अमान के साथ, फगसब हरबियन, तो उसने एक हरबी को गसब कर लिया, यानी उसके माल को गसब कर लिया। तो यहां हरबियन से पहले माल का लफ्ज मुजाफ महजूफ है भाई। तो कहते हैं जब कोई मुसलमान अमान के साथ दारुल हर्ब में दाखिल हुआ, फगसब हरबियन, तो इसने हरबी को यानी उसके माल को गसब कर लिया। सुम खराजा मुस्लिमैनी, फिर दोनों निकल आए मुस्लिमैनी इस हाल में कि मुसलमान थे, यानी वो मुसलमान ने हरबी का माल गसब किया ले और फिर दारुल इस्लाम आया, हरबी भी मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आ गया मुसलमान होकर। तो कहते हैं इस सूरत में उमीरा बिर्रद दिल गसबी, तो उस मुसलमान को हुक्म दिया जाएगा उस गसब को वापस करने का। उमीरा बिर्रद दिल गसबी, मुसलमान को उस मकसूबा माल के वापस करने का हुक्म दिया जाएगा। वलम युक्ज़ा अलैही, और उसके खिलाफ फैसला नहीं किया जाएगा, यानी मुसलमान को दयानतन हुक्म दिया जाएगा गसब शुदा माल तुम्हारे लिए हराम ली गैर ही हुआ, ये तुम्हें वापस करना चाहिए क्योंकि तुमने धोखा दिया है, अहद शिकनी की है, तुम तो अमान लेकर गए थे, फिर किस तरह किसी हरबी के माल पर तुम कब्जा कर सकते हो। तो कहते हैं ओ मीरा बिरद दिल गस भी वलम युक्जा अलैही, उस मुसलमान को दयानतन वो गसब वापस करने का हुक्म दिया जाएगा लेकिन उसके खिलाफ फैसला नहीं किया जाएगा। इस पर इश्काल होता है कि यही मसला तो पीछे भी जिक्र हो गया था मतन में, अब दोबारा मतन में इसको जिक्र करने की क्या जरूरत है। तवज्जो है भाई, पीछे क्या जिक्र हुआ था, एक मुसलमान दारुल हर्ब गया और उसके और हरबी के दरमियान इदानत या गसब वाला मामला हुआ, यहीं से तो बात शुरू हुई थी इस मसले की, और अब फिर जिक्र कर रहे हैं कि एक मुसलमान दारुल हर्ब गया है और इसने हरबी का माल गसब कर लिया। फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि यहां हरबी भी मुसलमान होकर इसके साथ आया है, दोनों मुसलमान होकर आए हैं, लेकिन याद रखो हरबी मुसलमान हो या ना हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हरबी उसी तरह कुफर की हालत में मुस्तामिन बनकर आ जाए या चाहे मुसलमान होकर आ जाए, दोनों सूरतों में काजी फैसला नहीं कर सकता। तो फिर इस मसले को दोबारा जिक्र करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि दूसरा आदमी चाहे मुसलमान होकर आए चाहे मुस्तामिन होकर आए हुक्म तो एक ही जैसा रहता है, और ये बात आप पीछे बयान कर चुके हैं कि मुसलमान भी वापस आ गया और हरबी भी मुस्तामिन बनकर वापस आ गया जी। तो उसका जवाब याद रखना कि पीछे मतन में यह जिक्र नहीं हुआ था कि मुसलमान के लिए यह माल पसंदीदा नहीं है अगर मुसलमान ने गसब किया है जी। तवज्जो है जी। तो यहां सिर्फ यह बतलाने के लिए कि उमीरा भी रद्दिल गसबी वलम युक्ज़ा अलैही, कि मुसलमान को दयानतन वो माल वापस करने का हुक्म दिया जाएगा, अलबत्ता उसके खिलाफ फैसला नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ यह बतलाने के लिए कि मुसलमान के लिए यह माल बेहतर नहीं, उसको यह माल वापस करना चाहिए, यह बयान करने के लिए इस बात को दोबारा जिक्र किया। तो कहते हैं ओ मीरा बी रद दिल गस बी वलम युकजा अलैही, तो मुसलमान को दयानतन हुक्म दिया जाएगा उस मकसूबा माल के वापस करने का और उसके खिलाफ फैसला नहीं किया जाएगा। अम्मा अदमुल कजा इफलिमा बैयन्ना, बाकी फैसला न करना तो उस वजह से है जो हमने बयान कर दिया कि अन्नहु मलकहू, कि मुसलमान इस माल का मालिक बन चुका है। वह अम्मल अमरु बिर रद्दी, और बाकी वापस करने का जो हुक्म है वह मुरादुहुल फतवा बिही, और इससे मुराद इसका फतवा है कि मुसलमान को इस बात का फतवा दिया जाएगा, यानी दयानतन उसे कहा जाएगा। तो कहते हैं वह अम्मल अमरु बिर रद्दी, और बाकी जो वापस करने का हुक्म है वह मुरादुहुल फतवा बिही, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की इससे मुराद जो है इसका फतवा है। फली अन्नहु फसदल मिल्कु, इसलिए क्योंकि मुसलमान की मिल्कियत फासिद है। लिमा युकारिनुहु मिनल मुहर्रमी, इस वजह से कि इसके साथ एक हराम चीज मिली हुई है। वह हुआ नक्ज़ुल अहदी, और वो मुआहदे को तोड़ना है, तो मुआहदा तोड़ने की वजह से इसने गदर किया है और गदर की वजह से माल में खराबी आ चुकी है, लिहाजा इस मुसलमान को दयानतन हुक्म दिया जाएगा कि यह माल वापस कर दे। बात समझ में आ गई। तो यहां मुसलमान को दयानतन हुक्म दिया जाएगा कि इसको माल वापस कर दे, और पिछली सूरत में मुसलमान को माल सदका करने का हुक्म था। वजह यह कि पिछली सूरत में मुसलमान माल छीन लाया है और दूसरा शख्स अभी भी हरबी ही है वहां पर दारुल हर्ब में, तो माल उस हरबी को तो वापस नहीं किया जाएगा, लिहाजा यहीं पर इसको सदका करने का हुक्म देंगे। और इस मसले के अंदर वो दूसरा हरबी भी मुसलमान होकर साथ आ गया है दारुल इस्लाम में, तो इसलिए मुसलमान को हुक्म दिया जाएगा कि यह माल उसको वापस करे। आगे देखिए भाई, वह इदा दखला मुस्लिमान इदार अल हरबी भी अमान इन फकतल अहदुहुमा साहिबहु अमदन औ खतअन। भाई सूरत मसला ये कि दो मुसलमान जो हैं वो दारुल हर्ब गए हैं अमान लेकर, और वहां एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दिया, चाहे ये कत्ल उसने जानबूझकर किया हो यानी कत्ल आमद हो आलाए कत्ल के जरिए, या गलती से कत्ल हुआ हो। तो दोनों सूरतों के अंदर याद रखो ये जो कातिल है इस पर दियत आएगी, और अगर इसने गलती से यह कत्ल किया है तो कफारा भी आएगा। तवज्जो है, पहले तो एक जाब्ता ये याद रखें कि इंदल अहनाफ कत्ले आमद के अंदर किसास आता है और कफारा नहीं आता, कत्ले आमद में किसास आता है और कफारा नहीं आता, जबकि कत्ले खता के अंदर दियत आती है और साथ कफारा भी आता है, दियत आती है और कफारा। और कत्ल का कफारा याद रखो वो एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना है, और अगर किसी को ये गुलाम या बांदी मुयस्सर नहीं है तो फिर उसको 60 मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। ये कत्ले खता के अंदर है। तवज्जो है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमन कतल मुमिनन खतअन, और जिसने किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दिया फतहरीरु रकबतिन मुमिनतिन, तो एक मोमिन गर्दन का आजाद करना है जी। एक मोमिन गर्दन यानी मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा, काफिर गुलाम या बांदी को आजाद करेगा तो यह कफारा अदा नहीं होगा। और फिर इसी आयत के आखिर में अल्लाह फरमाते हैं फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबिअैनि, जिसको ये मोमिन गुलाम या बांदी मुयस्सर ना हो तो उस पर 2 माह के मुसलसल रोजे हैं। तो कफारा कत्ल जो है वो कत्ले खता के अंदर आएगा, और इसके अंदर एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा, और अगर ये किसी को मुयस्सर नहीं है तो उसको मुसलसल 60 रोजे रखना पड़ेंगे। तो इंदा लखनाफ कत्ले आमद के अंदर कफारा नहीं आता, अलबत्ता कत्ले खता के अंदर दियत के साथ साथ कफारा भी आता है। भाई तो आप मसला चल रहा था, दो मुसलमान दारुल हर्ब चले गए हैं और उनमें से एक मुसलमान ने दूसरे को कत्ल कर दिया है, तो याद रखो चाहे ये कत्ले आमद हो चाहे कत्ले खता हो, दोनों सूरतों में दियत आएगी, दोनों सूरतों में दियत आएगी। यहां कत्ले आमद में किसास नहीं आ सकता, अगरचे कत्ले आमद में असल क्या है किसास आता है, लेकिन चूंकि ये कत्ल उसने दारुल हर्ब में किया है लिहाजा वहां किसास नहीं आ सकता, क्योंकि किसास वसूल करने के लिए कुव्वत चाहिए। एक शख्स को कत्ल करना है उसके लिए कुव्वत चाहिए, और कुव्वत तो मुसलमानों को दारुल इस्लाम में हासिल है, दारुल हर्ब में हासिल नहीं, लिहाजा दारुल हर्ब में किसास तो नहीं आ सकता, तो फिर किसास की जगह दियत आ जाएगी। तो मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को दारुल हर्ब में कत्ल किया, चाहे जानबूझकर कत्ल किया है चाहे गलती से, दोनों सूरतों में कातिल पर दियत आएगी। और हामद की सूरत में तो कफारा नहीं आता, लेकिन कत्ल खता अगर किया है तो फिर उसमें कफारा भी आएगा। भाई बात समझ में आ गई, भाई क्या वजह है, यह दियत क्यों आएगी और यह कफारा क्यों आएगा? तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे। वजह यह कि आप पीछे पड़ चुके हैं, एक है इस्मत मुअस्सिमा और एक है इस्मत मुतकव्विमा। कोई शख्स दारुल हर्ब में जब मुसलमान हो जाता है तो उसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो जाती है। इस्मत मुअस्सिमा, इस्मत का क्या माना? हिफाजत भाई। और मुअस्सिमा गुनाहगार बनाने वाली, यानी अगर कोई इससे तारुस करेगा, इसको कोई जानी नुकसान पहुंचाएगा तो वो गुनाहगार होगा। दुनिया में कहीं भी कोई शख्स मुसलमान हो जाए, चाहे दारुल हर्ब में ही क्यों ना हो, उसके साथ तारुस करना और उसको कत्ल करना हराम है। अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको कत्ल का अजीम गुनाह होगा भाई। तो जहां भी कोई शख्स मुसलमान हो जाए उसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो जाती है, उससे तारुस हराम हो जाता है, उसको कोई जानी नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है भाई। और फिर जब यही मुसलमान अगर दारुल इस्लाम आ जाए, फिर इसको इस्मत मुतकव्विमा भी हासिल हो गई, यानी अब अगर इसको कोई कत्ल करेगा तो उसकी वजह से किसास और दियत भी आएगी। दारुल हर्ब में अगर कोई शख्स मुसलमान हुआ तो वहां उसको इस्मत मुअस्सिमा तो हासिल है, लेकिन इस्मत मुतकव्विमा हासिल नहीं, तो वहां किसास और दियत नहीं आ सकती, न किसास और न दियत। तो दारुल इस्लाम जब आएगा ये मुसलमान, तो अब इसको इस्मत मुतकव्विमा भी हासिल हो गई, तवज्जो है। और इस्मत मुतकव्विमा की वजह से दियत या किसास आता है, और इस्मत मुअस्सिमा की वजह से कत्ल का अजीम गुना होता है और कफारा देना पड़ता है। तो ये जो दो मुसलमान दारुल हर्ब गए थे और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया है, तो अगर ये कत्ल आमद किया है तो फिर सिर्फ दियत देना पड़ेगी, और अगर गलती से कत्ल किया है तो कफारा भी देना पड़ेगा, दियत भी देना पड़ेगी। दियत क्यों देंगे? क्योंकि उसको इस्मत मुतकव्विमा हासिल थी, ये मुसलमान था भाई, दारुल इस्लाम से गया है, दारुल इस्लाम के अंदर इसको इस्मत मुअस्सिमा भी हासिल थी और इस्मत मुतकव्विमा भी हासिल थी। तो अब जब ये अमान लेकर दारुल हर्ब गया है तो भी इसने वापस लौटना है, ये वापसी के इरादे से गया है। तो यूं समझो गोया ये अभी भी दारुल इस्लाम में ही है, लिहाजा अभी भी इसको इस्मत मुअस्सिमा भी हासिल और इस्मत मुतकव्विमा भी हासिल है। और इस्मत मुअस्सिमा की वजह से गुना होता है, और अगर कत्ल खता हो तो कफारा भी आता है, और इस्मत मुतकव्विमा की वजह से किसास और दियत आया करती हैं। तो यहां पर किसास तो नहीं आ सकता, अलबत्ता दियत दोनों सूरतों में आएगी, चाहे कत्ल आमद है और चाहे कत्ल खता है। और क्यों आएगी दियत? इस्मत मुतकव्विमा की वजह से। और कत्ल खता के अंदर कफारा भी आएगा, किस वजह से? इस्मत मुअस्सिमा की वजह से। अलबत्ता कत्ल आमद के अंदर कफारा नहीं आता, बात समझ में आ गई। वहां कत्ल का अजीम गुनाह तो हुआ है इस्मत मुअस्सिमा की वजह से, लेकिन कफारा नहीं आता। तफसील समझ में आ गई जी। देखिए अब किताब पर कहते हैं, वह ईदा दखला मुस्लिमानी दारुल हर्ब भी अमानिन, और जब दो मुसलमान दारुल हर्ब में अमान के साथ दाखिल हुए, फकतला अहदुहुमा साहिबहू अमदन औ खतअन, तो उन दोनों में से एक ने अपने साथी को कत्ल कर दिया, अमदन औ खतअन जानबूझकर या गलती से, फ़अल القاتل الدية في ماله, तो कातिल पर दियत वाजिब होगी, फी माली ही कातिल के माल में ही। भाई वैसे तो दियत के अंदर सारे कबीले वाले मिलकर दियत अदा करते हैं और तीन साल के अरसे में अदा की जाती है। तवज्जो है, एक इंसानी जान की कीमत कितनी है? 100 ऊंट हैं, और ये तीन साल के अरसे में अदा किए जाते हैं तीन किस्तों के अंदर, और सारे कबीले वाले मिलकर अदा करते हैं। लेकिन यहां पर ये जो कातिल है इसको अकेले ये दियत अदा करना पड़ेगी, और इसकी वजह क्या है वो आगे साहिबे हिदाया बतलाएंगे। तो कहते हैं, फालल कातिल दियत फी माली, कातिल पर दियत वाजिब होगी उसी के माल में, दियत वाजिब होगी चाहे कत्ले आमद हो चाहे कत्ले खता हो। वह अलैहिल कफारा तु फिल खताई, और कातिल पर कफारा भी वाजिब होगा फिल खताई, खता की सूरत में अगर इसने गलती से कत्ल किया है। कहते हैं, अमल कफारा तु, तो जो कफारा है, अब एक एक की वजह बयान फरमाएंगे कि कफारा क्यों आएगा, दियत क्यों आएगी और सिर्फ कातिल के माल में क्यों आएगी। कहते अमल कफारा, तू तो कफारा जो है फल इतलाकिल किताबी, किताबुल्लाह के मुतलक होने की वजह से, किताबुल्लाह के अंदर मुतलकन जिक्र है कि किसी से गलती से कत्ल हो जाए तो उसको एक मुसलमान गुलाम या बांदी आजाद करना पड़ेगा, और अगर यह मुयस्सर ना हो तो 60 रोजे रखना पड़ेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमन कतल मुमिनन खतअन, और जिसने गलती से किसी मोमिन को कत्ल कर दिया, फतहरीरु रकबति मुमिनतिन, तो एक मोमिन गर्दन का आजाद करना है। इसमें कोई कैद नहीं है कि दारुल इस्लाम में हो तो फिर कफारा आएगा और दारुल हर्ब में हो तो कफारा नहीं आएगा। तो किताबुल्लाह में मुतलकन कफारे का जिक्र है, तो चाहे यह कत्ल दारुल इस्लाम में हो फिर भी कफारा आएगा, और चाहे दारुल हर्ब में हो तो फिर भी कफारा आएगा। तो कहते हैं अमल कफारा तुफल इतलाकिल किताबी, तो कफारा जो है वो किताब के मुतलक होने की वजह से है। वदियतुली अनल इस्मत साबित बिल इहराज बिदारिल इस्लामी ला तबतुलू, वदियतु और दियत आएगी, लिअन्नल इस्मत साबित बिल इहराज बिदारिल इस्लामी, इसलिए क्योंकि वो इस्मत जो दारुल इस्लाम में महफूज होने की वजह से साबित है। ला तब्तुलु बिआरिज़ि दुखूल बिल अमानी, तो वो अमान के साथ दारुल हर्ब में दाखिल होने के आरिज की वजह से बातिल नहीं होगी। तो वो अमान के साथ दारुल हर्ब में दाखिल होने के आरिस की वजह से ये इस्मत बातिल नहीं होगी, इसलिए क्योंकि इसने वापस लौटना है तो गोया तकदीरन अभी भी दारुल इस्लाम में है, तो इसको इस्मत मुअस्सिमा भी हासिल है और इस्मत मुतकविमा भी हासिल है। कलाम ये कि हमारे नजदीक जो मुसलमान दारुल हर्ब अमान लेकर जाता है, ये जो मुस्तामिन है, ये मुसलमान मुस्तामिन जो है, इसको वहां पर भी इस्मत मुतकविमा भी हासिल है और इस्मत असीमा भी हासिल है। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लि अन्नल इस्मत साबित बिल इहराज बिदारिल इस्लामी, और इसलिए क्योंकि वो इस्मत जो दारुल इस्लाम में महफूज होने की वजह से साबित है। ला तब तुलु बिआरिज दुखूल बिल अमानी, ला तब तुलु ये इस्मत बातिल नहीं होगी, बिआरिज दुखूल बिल अमानी, अमान के साथ दारुल हर्ब में दाखिल होने के आरिज की वजह से। वह इन नमा ला यजिबुल किसास, यहां से सवाल का जवाब दे रहे हैं कि किसास क्यों नहीं आएगा, अगर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को दारुल हर्ब में कत्ल किया है तो किसास क्यों नहीं आएगा। कहते हैं वह इन नमा ला यजिबुल किसासु, और किसास वाजिब नहीं होगा। لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة, इसलिए क्योंकि किसास को वसूल करना मुमकिन नहीं है, إلا بمنعة मगर कुवत के जरिए, ولا منعة بدون الإمام وجماعة المسلمين, और कोई कुवत नहीं है बगैर इमाम और बगैर मुसलमानों की जमात के, ولم يوجد ذلك في دار الحرب, और दारुल हर्ब में तो ये चीज नहीं पाई जाती, ना तो वहां इमाम है मुसलमान का और ना वहां मुसलमानों की जमात है, तो वहां मुसलमानों को कुव्वत नहीं, जब कुव्वत नहीं तो वहां किसास लेना मुमकिन नहीं है। आगे देखिए, कहते हैं वह इन्नमा तजिबुद्दियतु फी मालिही फिल आमदी, भाई मतन में आया था कि जो दियत आएगी ये कातिल के माल में से अदा की जाएगी, चाहे उसने कत्ले आमद किया हो चाहे कत्ले खता किया हो। अब उसकी वजह बयान करेंगे। याद रखो ये जो दियत अदा करते हैं कबीले वाले, ये सिर्फ कत्ले खता के अंदर दियत अदा करते हैं, कत्ले आमद के अंदर नहीं। कत्ले आमद में नहीं, कत्ले आमद में तो एक आदमी ने जानबूझकर आलाय कत्ल के जरिए दूसरे आदमी को कत्ल किया है, यानी इसका इरादा ही जुर्म करने का था, तो इसके अंदर कबीले वाले साथ नहीं देते कि तुमने खुद जुर्म किया है लिहाजा खुद ही यह सारा माल अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी फर्द से गलती से कत्ल हो जाए तो फिर सारे कबीले वाले मिलकर उसकी मदद करते हैं, क्योंकि उसने यह कत्ल जानबूझकर नहीं किया बल्कि गलती से हुआ है। और कबीले वालों की भी कोताही है, कबीले वालों का काम था कि अपने हर आदमी की हिफाजत करें कत्ल करने से, अपने हर आदमी को रोक कर रखें जुर्म करने से। तो जब इनके आदमी ने जुर्म किया तो कबीले वालों की भी कोताही हुई, जब उनकी कोताही हुई है इसने गलती से इसे जुर्म हुआ है तो वो इसकी मदद करेंगे भाई। लेकिन कत्ले आमद में उसने जानबूझकर आलाय कत्ल से कत्ल किया है, वहां कबीले वाले उसका साथ नहीं देंगे। तो कहते हैं वह इन नमाता जिबू दियत फीमा ली ही फिल आमदी, और दियत वाजिब होगी कातिल ही के माल में कत्ल आमद के अंदर। लि अन आवा किला ला ताकिलुल आमदा, अकला याकिलु के माने होते हैं दियत अदा करना, और आवाकिल का माना है दियत अदा करने वाले, मुराद वो कबीले वाले हैं। कहते हैं लिअन अल आवाकिल ला ताकिलुल आमदा, इसलिए क्योंकि दियत अदा करने वाले वो कत्ले आमद की दियत अदा नहीं करते। लिअन अल आवाकिल ला ताकिलुल आमदा, इसलिए क्योंकि आवाकिल जो हैं यानी वो कबीले वाले जो हैं, ला ताकिलुल आमदा वो कत्ले आमद की दियत अदा नहीं करते। वफिल खताई, भाई दूसरी सूरत यह थी कि गलती से दारुल हर्ब में एक मुसलमान ने दूसरे को कत्ल किया है, तो इसके अंदर भी कबीले वाले साथ शरीक नहीं होंगे। वजह यह कि कबीले वालों पर यह जो दियत आती है, इसलिए क्योंकि कबीले वालों की भी कोताही है, इनका काम था अपने आदमी को इस बात से बचा कर रखें कि वो किसी दूसरे को कत्ल करे, तो उनकी तरफ से चूंकि कोताही होती है लिहाजा उनको भी ये माल अदा करना पड़ता है। लेकिन यहां तो इस आदमी ने जो कत्ल किया है वो दारुल हर्ब में किया है, तो वहां तो वो किसी को कत्ल से रोकने पर कादिर नहीं थे, लिहाजा कबीले वालों की तरफ से कोई कोताही नहीं पाई गई। जब कोई कोताही नहीं पाई गई तो कबीले वालों पर यह दियत का माल भी नहीं आएगा, वो कातिल को खुद ही अदा करना पड़ेगा अगरचे उसने गलती से कत्ल किया है। भाई तो कहते हैं वफिल खताई, और खता के अंदर भी कातिल के माल में से दियत होगी। कहते हैं लिअन्नहु ला कुदरत लहुम अला सियानती, इसलिए क्योंकि आकिला जो है उनको कोई कुदरत नहीं है अला सियानती उस कातिल की हिफाजत करने की, कि उस कातिल की हिफाजत करते कत्ल करने से। लिअन्नहु ला कुदरत लहुम अला सियानती, इसलिए क्योंकि कबीले वालों को कोई कुदरत नहीं है उस कातिल की हिफाजत करने पर। मा तबायुनि दारैनि, दोनों दारों के मुख्तलिफ होने के साथ, दोनों दार मुख्तलिफ थे इसलिए उनको कुदरत ही नहीं थी बचाने की। वल वुजूब अलैहिम अला तिबारी तरकीहा, और ये जो दियत का वुजूब होता है आकिला पर अला तिबारी तरकीहा, वो इस सयानत को, वो इस हिफाजत को तर्क करने के एतबार से होता है कि इन्होंने कोताही की है। लेकिन यहां तो इनकी तरफ से कोई कोताही नहीं पाई गई क्योंकि तबायुन दारैन था। भाई आगे देखिए, व इन काना असीरैनी फकतल अहदुहुमा साहिबहू औ कतल मुस्लिमुन ताजिरुन असीरन फला शैअ अलल कातिल इल्लल कफारतु फिल खता इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। व काला फिल असीरैनी दियतु फिल खता वल हमदी। भाई अब सूरत यह है कि दो मुसलमान कैदी हैं दारुल हर्ब में, उनमें से एक कैदी दूसरे को कत्ल कर देता है, या एक मुसलमान ताजिर जो है वो मुसलमान कैदी को कत्ल कर देता है, तो इस सूरत में इमाम साहब के नजदीक सिर्फ खता की सूरत में कफारा आएगा और दियत न आमद की सूरत में आएगी और न खता की सूरत में आएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, यह मसला भी उसी तरह है जिस तरह मुस्तामिन वाला मसला था, और मुस्तामिन जो है वो मुसलमान जो अमान लेकर दारुल हर्ब में गया है, जैसे उसको इस्मत मुअस्समा हासिल होती है इसी तरह उसको इस्मत मुकव्विमा भी हासिल होती है, लिहाजा किसास तो नहीं आएगा लेकिन दियत हर हाल में आएगी। तो साहिबैन के नजदीक चाहे कत्ले आमद हो कैदी का चाहे कत्ले खता हो, दोनों सूरतों में कातिल पर दियत आएगी, और अगर कत्ल गलती से हुआ है तो उसमें कफारा भी आएगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि चाहे कैदी को आमदन कत्ल किया जाए चाहे खताअन कत्ल किया जाए, दोनों सूरतों में दियत नहीं आएगी। हां अलबत्ता अगर कत्ले खता हुआ है तो फिर कफारा आएगा। वजह यह है कि इमाम साहब और साहिबैन का आपस में इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक जो मुसलमान कैदी है उसको सिर्फ इस्मत मुअस्समा हासिल है, उसकी इस्मत मुतकव्विमा खत्म हो गई, उसकी इस्मत मुतकव्विमा खत्म हो गई। जब इस्मत मुतकव्विमा खत्म हो गई तो उसी की वजह से तो किसास और दियत आया करती है, तो लिहाजा यहां मुसलमान कैदी को कत्ल करने से दियत नहीं आएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, मुसलमान कैदी जो है उसको भी मुस्तामिन की तरह इस्मत मुतकविमा भी हासिल है और इस्मत मुअस्समा भी हासिल है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन काना असीरैनी, और अगर वो दोनों मुसलमान जो हैं वो कैदी थे, फकतला अहदुहुमा साहिबहू, तो उन दोनों कैदियों में से एक ने अपने साथी को कत्ल कर दिया, औ कतला मुस्लिमुन ताजिरुन असीरन, या किसी मुसलमान ताजिर ने कैदी को कत्ल कर दिया, फला शैअ अलल कातिली, तो कातिल पर कोई चीज नहीं है, यानी उस पर दियत नहीं आएगी, इल्लल कफारतु फिल खताई, सिर्फ कफारा आएगा खता की सूरत में, इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्ला, इमाम साहब के नजदीक, इमाम साहब के नजदीक सिर्फ कफारा आएगा, क्योंकि सिर्फ इस्मत मुअस्सिमा है इस कैदी की, इस्मत मुतकविमा नहीं, और इस्मत मुअस्सिमा की वजह से तो गुना होता है और कफारा आता है भाई। तो कहते हैं इल्लल कफारा तो फिल खता इंदा अबी हनीफा रहमुल्ला, सिर्फ कफारा आएगा खता की सूरत में इमाम साहिब के नजदीक, वकाला फिल असीरैनी, और साहिबैन जो हैं उन कैदियों के बारे में फरमाते हैं, अद्दियतु फिल खता वल आमदी, के दियत आएगी खता के अंदर और आमद के अंदर, दोनों सूरतों में दियत आएगी भाई। वकाला फिल असीरैनी, और साहिबैन उन दो कैदियों के बारे में फरमाते हैं, कौन से दो कैदी, वो जिसको कत्ल किया गया है, चाहे कैदी ने कत्ल किया है चाहे ताजिर ने कत्ल किया है, तो इन दो कैदियों के बारे में साहिबैन फरमाते हैं, अदियतु फिल खता इवल आमदी, के दियत आएगी खता के अंदर और आमद के अंदर, यानी दोनों सूरतों में, लिअन्न अल इस्मत ला तबतुलु बिआरिज़िल असरी, असारा यासिरु असरन का माना है कैदी बनाना, لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الْأَسْرِ, इसलिए क्योंकि इस्मत जो है वो बातिल नहीं होती कैदी बनाने के आरिस की वजह से, अगर कैदी बनाने का आरिस पेश आ गया है तो उसकी वजह से इस्मत बातिल नहीं, इस कैदी को भी इस्मत मुअस्सिमा भी हासिल है और इस्मत मुतकविमा भी। तो कहते हैं لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الْأَسْرِ, इसलिए क्योंकि इस्मत बातिल नहीं होती कैदी बनाने के आरिस की वजह से, कमा ला तब्तुलु بِعَارِضِ الْإِسْتِيمَانِ, जैसे कि इस्मत बातिल नहीं होती अमान लेने के आरिस की वजह से, अलामा बैयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि दारुल इस्लाम की वजह से इस्मत हासिल है, तो दारुल हर्ब में अमान लेकर जाने से भी वो इस्मत साकित नहीं होती। وَامْتِنَاعُ الْقِصَاصِ, और किसास का मुमतना होना, यानी किसास का न आना, पिछले मसले में भी बताया था किसास नहीं आ सकता और यहां भी किसास नहीं आ सकता, क्योंकि दारुल हर्ब में मुसलमानों को कुव्वत हासिल नहीं है और किसास की वसूली के लिए कुव्वत चाहिए जी। तो कहते हैं وَامْتِنَاعُ الْقِصَاصِ لِعَدَمِ الْمَنَعَةِ, और किसास का मुमतना होना यानी न आना, لِعَدَمِ الْمَنَعَةِ, वो कुव्वत न होने की वजह से है, वयजिबु दियतु फी माली ही, और दियत जो है वो कातिल ही के माल में वाजिब होगी, लिमा कुल ना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि कत्ल आमद में तो आकिला शरीक ही नहीं होते और कत्ल खता में शरीक होते हैं क्योंकि उन्होंने हिफाजत के अंदर कोताही की थी, लेकिन यहां तो दारुल हर्ब के अंदर मसला पेश आया है, यहां तो उसके आकिला को कुदरत ही हासिल नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, लिहाजा उन पर माल नहीं आएगा, सारा माल कातिल ही को अदा करना पड़ेगा, यह माना है। वयजिबु दियतु फी मालिही लिमा कुलना, और दियत कातिल ही के माल में वाजिब होगी उस वजह से जो हमने कह दिया। वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, अब इमाम साहब की दलील आ गई, इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि कैद की वजह से मुसलमान कैदी की इस्मत मुतकविमा खत्म हो गई भाई, जब इस्मत मुतकविमा खत्म हुई तो अब इस कैदी को कत्ल करने की वजह से किसास या दियत नहीं आ सकता, अलबत्ता इस्मत मुअस्सिमा इसको हासिल है क्योंकि मुसलमान है ये, तो उसकी वजह से सिर्फ गुना होगा और अगर कत्ले खता है तो कफारा देना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नबिल असर सारा तबअन लहुम, अन्नबिल असरी, मैंने बताया असारा या सिरु असरन का माना है कैदी बनाना, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नबिल असरी के कैदी बनाने की वजह से सारा तबाअन लहुम, ये मुसलमान कैदी भी उन दारुल हर्ब वालों के ताबे हो गया, ये कैदी भी उनके ताबे हो गया, और दारुल हर्ब वाले असल और कैदी ताबिअ, तो असल को जब इस्मत मुतकविमा हासिल नहीं तो कैदी को कैसे इस्मत मुतकविमा हासिल हो सकती है। तो इमाम साहब फरमाते हैं अन नबिल असरी सारा तबान लहूम कि कैदी बनाने की वजह से यह मुसलमान कैदी दारुल हर्ब वालों के ताबे हो गया बिसैरूरती ही मकहूरन फी ऐदीहिम। अब यहां से वजह जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान कैदी दारुल हर्ब वालों के ताबे कैसे हो गया। कहते हैं वजह यह कि बिसैरूरती ही मकहूरन, इस वजह से कि वो मगलूब हो गया है फी ऐदीहिम उनके कब्जे में, मुसलमान कैदी उनके कब्जे में मगलूब हो गया है, वो पूरी तरह इसके ऊपर गालिब आ गए हैं। यहां तक कि जब वो सफर पर निकलते हैं कैदी को लेकर तो मुसलमान कैदी भी मुसाफिर बन जाता है, और जब वो कहीं पर पड़ाव डालते हैं तो मुसलमान कैदी भी मुकीम बन जाता है। तो इतना ताबिया बन गया कि अब मुसाफिर या मुकीम बनना भी उनके ताबिया हो गया। मालूम हो मुसलमान कैदी मगलूब हो चुका है पूरी तरह। तो कहते हैं बिसैरूरती ही मकहूरन फी ऐदीहिम, इस वजह से कि मुसलमान कैदी मगलूब हो गया उनके कब्जे में, वलिहादा यसीरु मुकीमन भी इकामतिहिम, और इसीलिए मुसलमान कैदी मुकीम बन जाता है उन हरबियों की इकामत करने की वजह से, व मुसाफिरन भी सफरिहिम, और मुसलमान कैदी मुसाफिर बन जाता है उन हरबियों के सफर की वजह से, फयब तुलुबिहिल एहराज असलन, तो इसकी वजह से एहराज जो है कतई तौर पर बातिल हो गया। अब मुसलमान की जान मासूम न रही, यानी इस्मत मुतकविमा खत्म हो गई। वसारा कल मुस्लिम लदी लम युहाजिर इलैना, और ये मुसलमान कैदी भी उसी मुसलमान की तरह हो गया जिसने हमारी तरफ हिजरत नहीं की। भाई मैंने आपको बतलाया था कि दारुल हर्ब के अंदर भी अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाता है तो उसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो गई, लेकिन इस्मत मुतकविमा नहीं। इस्मत मुतकविमा तब हासिल होगी जब दारुल इस्लाम आ जाएगा। तवज्जो है, जब कोई हरबी दारुल हर्ब में मुसलमान होता है तो उसके साथ तारुस हराम हो जाता है, उसे कत्ल करना हराम हो गया। कोई कत्ल करेगा तो कत्ल का अजीम गुनाह मिलेगा, उसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो गई। लेकिन इस्मत मुतकविमा यानी जिसकी वजह से किसास या दियत आती है वो अभी भी उसको हासिल नहीं, वो जब दारुल इस्लाम आएगा फिर उसको इस्मत मुतकविमा भी हासिल हो जाएगी। तो जिस तरह दारुल हर्ब में कोई हर्बी मुसलमान हो जाए तो उसको सिर्फ इस्मत मुअस्सिमा हासिल होती है, इस्मत मुतकविमा नहीं। इसी तरह ये मुसलमान कैदी भी जब मगलूब हो गया तो ये भी उसी मुसलमान की तरह बन गया जो दारुल हर्ब में ही मुसलमान हुआ है, और उसको सिर्फ इस्मत मुअस्सिमा हासिल थी, तो इस मुसलमान कैदी को भी सिर्फ इस्मत मुअस्सिमा हासिल है। यह माना है वसारकल मुस्लिम लदी लम युहाजिर इलैना, और यह मुसलमान कैदी उस मुसलमान की तरह हो गया जिसने हमारी तरफ हिजरत नहीं की। वखुसल खता उबिल कफारती, यहां से वजह जिक्र कर रहे हैं, मतन के अंदर आया था कि खता के अंदर कफारा आएगा, आमद के अंदर कफारा नहीं बल्कि सिर्फ खता के अंदर कफारा आएगा, उसकी वजह बयान कर रहे हैं। मैंने वजह जिक्र कर दी कि इंदल अहनाफ कत्ले आमद के अंदर कफारा नहीं आता, कत्ले खता के अंदर कफारा आता है, जबकि इमाम शाफिर हमला के नजदीक कत्ले आमद में भी कफारा आता है और कत्ले खता में भी। वो फरमाते हैं, इमाम शाफिर हमला फरमाते हैं कि जब कत्ले खता के अंदर कफारा आ रहा है, हालांकि कत्ले खता कम जुर्म है कत्ले आमद के मुकाबले में, कत्ले आमद में तो बाकायदा आला कत्ल के जरिए कोई दूसरे को कत्ल करता है, तो कत्ले खता कम जुर्म है, जब उसके अंदर कफारा आ रहा है तो बड़ा जुर्म जो है यानी कत्ले आमद उसमें बतरीके औला कफारा आएगा। तवज्जो है, जबकि हम कहते हैं नहीं, कत्ले आमद के अंदर कफारा नहीं आ सकता। वजह यह कि कफारा जो है इसके अंदर दो पहलू हैं, एक एतबार से देखें तो यह सजा है, जुर्म किया है, दूसरे एतबार से देखें तो यह इबादत भी है। मसलन कफारे के अंदर रोजे रखे जाते हैं और रोजे तो इबादत हैं भाई, तो मालूम हुआ कफारे के अंदर सजा का भी पहलू और इबादत का भी पहलू, लिहाजा कफारा उन्हीं चीजों में आएगा जिसमें दोनों पहलू हो, हराम होने का भी पहलू हो और हलाल होने का भी पहलू हो। और यह कत्ले खता में है, कत्ले खता के अंदर मसलन एक आदमी तीर चला रहा है, उसने शिकार पर तीर चलाया और वह गलती से एक इंसान को जाकर लगा, तो इसके इरादे को देखें तो यह फेल उसका जायज था, वह एक शिकार पर तीर चला रहा था, तो इस एतबार से देखें इसका तीर चलाना जायज, लेकिन इस एतबार से देखें कि इसकी वजह से जान चली गई है, इसका तीर चलाना हराम। तो देखो इस तीर चलाने में दोनों पहलू आ गए, हलाल होने का भी पहलू और हराम होने का भी पहलू। लिहाजा इसकी वजह से कफारा आएगा कि कफारे के अंदर भी दोनों पहलू हैं, सजा वाला पहलू भी है और इबादत वाला पहलू भी है। जबकि कत्ल आमद जो है वो तो हर एतबार से जुर्म ही जुर्म है, वहां तो इबाहत वाली और जवाज की कोई सूरत नहीं, लिहाजा उसकी वजह से कफारा भी नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह खुद सलखता उबिल कफारती, और खता को खास किया गया कफारे के साथ कि सिर्फ खता के अंदर कफारा आएगा। लिअन्नहु ला कफारा तफिल आमदी इंदना, इसलिए क्योंकि कत्ल आमद के अंदर हमारे नजदीक कफारा नहीं है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक कत्ल आमद में भी कफारा है। भाई आगे देखिए भाई, फसलुन भाई, इस फसल के अंदर जो अहले हर्ब में से अमान लेकर दारुल इस्लाम आता है, यानी वो हर्बीय मुस्तामिन जो है उसके अहकाम जिक्र फरमाएंगे। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वह इदा दखल अल हर्बी यू इलैना मुस्तामिना, और जब कोई हर्बी हमारी तरफ दाखिल हुआ मुस्तामिन होकर, लम यू मक्कन अन युकीम फी दारिना सनतन, तो उसको कुदरत नहीं दी जाएगी कि वह हमारे दार में एक साल तक रहे। वह यकूल लहुल इमामु, और इमाम उससे कहेगा, इन अकम तमाम सनती, अगर तुमने कियाम किया पूरा साल, वजातु अलै कल जिजिया, था तो मैं तुम्हारे ऊपर जिजिया मुकरर कर दूंगा। भाई याद रखो, हर भी हमारे वतन में आता है अमान लेकर, तो उसको ज्यादा अरसा यहां रहने की इजाजत नहीं होगी। वजह यह कि फिर यहां की वो जुबान सीख लेगा, यहां के लोगों के रहने सहने के तरीके सीख लेगा, तो ये जासूसी करेगा और कुफार को यहां की खबरें पहुंचाएगा भाई। तो लिहाजा इसको ज्यादा अरसा यहां रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो कहते हैं वल असलू, और जाबता यह है कि अन्नल हर्बी यला युमक्कनु मिन इकामतिन दाइमतिन फी दारिना, कि हर्बी को कुदरत नहीं दी जाएगी कि वो दायमी तौर पर इकामत इख्तियार करे हमारे दार में, यानी दारुल इस्लाम में, इल्ला बिल इस्तिरकाकी अविल जिजियती, मगर गुलाम बनाने के जरिए या जिजिया के जरिए, यानी अगर उसको गुलाम बना लिया जाए फिर वो यहां रह सकता है हमेशा के लिए, या उसको जिम्मी बना दिया जाए और उससे जिजिया लिया जाए फिर वो हमेशा के लिए यहां रह सकता है। तो ये माना है इल्ला बिल इस्तिरकाकी अविल जिजियती, मगर सिर्फ गुलाम बनाने की वजह से, अविल जिजियती या जिजिये की वजह से, लिअन्नहु यसीरु ऐनन लहुम, इसलिए क्योंकि ये उनके लिए जासूस बन जाएगा। ऐन भाई, ऐन आंख को कहते हैं, और इसी का एक माना जासूस के भी आते हैं। कहते हैं लिअन्नहु यसीरु ऐनन लहुम, इसलिए क्योंकि ये उनके लिए जासूस बन जाएगा। वआउनन अलैना, और ये हमारे खिलाफ उनका मददगार बन जाएगा। औन का क्या माना? मददगार भाई। तो वआउनन अलैना, तो वो मददगार बन जाएगा, अलैना हमारे खिलाफ। फयल तहिकुल मजर्रतु बिल मुस्लिमीना, तो मुसलमानों को इससे नुकसान होगा। वयुमक्कनु मिनल इकामतिल यसीरती, और उसको थोड़ी सी इकामत की कुदरत दी जाएगी, यानी थोड़े अरसे के लिए वो आ सकता है। लिअन नफी मनईहा, इसलिए क्योंकि थोड़े अरसे के इकामत से भी मना करने में, कत अल मीरती व जलबी व सद्दबाबी तिजारती, कत अल मीरा, मीरा कहते हैं वो खुराक जिसे सफर के लिए जमा किया जाए, यहां ये मुतलकन खुराक के माना में है। मीरा का क्या माना? खुराक। जलब भाई, जलब का माना है सामान तिजारत। जलब के कई माना आते हैं, यहां इसका मुनासिब माना जो बनता है वो है सामान तिजारत, इसलिए क्योंकि अगर हम हर्बियों को मामूली मुद्दत के लिए भी यहां आने नहीं देंगे तो फिर तो खुराक का रास्ता भी बंद हो जाएगा, और नीज सामान तिजारत का रास्ता भी बंद हो जाएगा, और नीज तिजारत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम उनको यहां नहीं आने देंगे तो वो हमारे मुसलमानों को भी अपने मुल्क में नहीं आने देंगे, तो इसके अंदर मुसलमानों का नुकसान है भाई। तो कहते हैं लिअन नफी मनईहा, इसलिए क्योंकि थोड़ी सी इकामत को मना करने में, कत अल मीरती व जलबी, इसमें खुराक और सामान तिजारत को काटना है, व सद्दबाबी तिजारती, और इसके अंदर तिजारत के दरवाजे को बंद करना है। फसल ना बैना हुमा बिसनतिन, तो हमने फर्क किया इन दोनों के दरमियान एक साल के जरिए। भाई साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि हर्बी को मुद्दत कसीरा के लिए तो दारुल इस्लाम में रहने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन मुद्दत कलीला के लिए उसको दारुल इस्लाम में रहने की इजाजत होगी। तो अब हमने मुद्दत कसीरा और मुद्दत कलीला के दरमियान फर्क साल के जरिए किया कि अगर एक साल से कम है तो यह मुद्दत कलीला है और एक साल या इससे ज्यादा है तो यह मुद्दत कसीरा है। भाई तो कहते हैं फफसलना बैनहुमा बिसनतिन, तो हमने इन दोनों में फर्क किया एक साल के जरिए। लिअन्नहा मुद्दतुन तजिबु फीहल जिजियतु, इसलिए क्योंकि एक साल ऐसी मुद्दत है कि उसके अंदर जिजिया वाजिब हो जाता है। आप जानते हैं कि वो काफिर जो दारुल इस्लाम में जिम्मी बनकर रहते हैं हर साल उनको जिजिया देना पड़ता है, वो बड़ा मामूली सा होता है, अलबत्ता उस जिजिये की वजह से पूरा साल इस्लामी हुकूमत उनकी जान और माल की हिफाजत करती है। भाई तो कहते हैं लिअन्नहा मुद्दतुन तजिबु फीहल जिजियतु, इसलिए क्योंकि ये एक साल ऐसी मुद्दत है कि इसके अंदर जिजिया वाजिब हो जाता है। फयकूनुल इकामतु लिमसलहतिल जिजियति, तो इस सूरत के अंदर जो इकामत होगी वो जिजिये की मसलहत की वजह से होगी, जिजिये का फायदा हासिल होगा। सुम्म इन रजा बादा मकालतिल इमामी, फिर उसके बाद अगर वो वापस लौट गया इमाम के कहने के बाद। मकाला मकालतुन, याद रखो मकाला ये मस्तर है, काला यकूलु कौलन व मकालन व मकालतन, तो कौल मस्तर भी आता है, मकाल मस्तर भी आता है और मकाला मस्तर भी आता है। कहते हैं सुम्म इन रजा बाद मकालतिल इमामी, फिर अगर वो शख्स इमाम के कहने के बाद वापस लौट गया। कबला तमाम सनति इला वतनी ही, साल पूरा होने से पहले ही अपने वतन को। फला सबीला अलैही, तो उस पर कोई रास्ता नहीं है, यानी उसके साथ कोई तारुज नहीं किया जाएगा। अगर साल से पहले मुस्तामिन जो है अपने वतन वापस चला जाता है तो मुसलमानों का उस पर कोई रास्ता नहीं, मुसलमान उससे कोई तारुज नहीं कर सकते, न उसके जान में और न उसके माल में। वह ईसा मकसा सनतन फहुआ जिम्मी युन, और अगर वो एक साल ठहरा रहा फहुआ जिम्मी युन, तो वो जिम्मी है। लिअन्नहु लम्मा अकाम सनतन, इसलिए क्योंकि जब वो एक साल तक ठहरा रहा। बाद तकद्दुमिल इमामी इलैही, बाद इमाम का उसको हुक्म देने के। तकद्दुम भाई, तकद्दुम का एक माना है हुक्म देना, इसी तरह तकद्दुम का एक माना है किसी पर कोई चीज पेश करना। तो जब इमाम ने एक दफा उस पर यह बात पेश कर दी थी कि अगर एक साल तक रहे तो तुम जिम्मी बन जाओगे और तुम्हें जिजिया देना पड़ेगा और फिर तुम्हें वापस जाने की इजाजत नहीं होगी, तो इमाम के ये कहने के बाद भी अगर ये एक साल रहता है मालूम हुआ वो जिम्मी बनने पर राजी है। भाई तो कहते हैं लिअन्नहु लम्मा अकाम सनतन, इसलिए क्योंकि जब उसने एक साल इकामत इख्तियार कर ली। बाद तकद्दुमिल इमामी इलैही, इमाम के उसको हुक्म देने के बाद। सारा मुल्तजिमन लिल जिजियति, तो ये शख्स इल्तिजाम करने वाला हो गया जिजिये का, किसने अपने ऊपर जिजिये को लाजिम कर लिया। फयसीरु जिम्मियन, तो ये जिम्मी बन जाएगा। वलिल इमामी अन युक्कता फी ज़ालिका मा दूना सनति का शहरी व शहर। यहां से बतला रहे हैं कि हमने कहा कि मुस्तामिन जो है वो एक साल से कम मुद्दत दारुल इस्लाम में रह सकता है, लेकिन ये कोई कतई बात नहीं है, ये इमाम की राय के सुपुर्द है। इमाम जो मुद्दत मुकरर करना चाहे वो कर सकता है कि मसलन एक महीने से ज्यादा किसी को ना रहने दे या दो महीने से किसी को ज्यादा ना रहने दे। तो कहते हैं वलील इमाम कतफ फी ज़ालिका, और इमाम के लिए जायज है कि वो इसके अंदर वक्त मुतय्यन करे। मा दून सनति, साल से कम का। शहरी व शहरैनी, जैसे एक महीना है और दो महीने हैं। वह इदा अकामहा बाद मकालतिल इमाम, यहां से साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि तीन सूरतों के अंदर मुस्तामिन जिम्मी बन जाएगा जी। तीन सूरतें जिक्र करेंगे जिनमें मुस्तामिन जिम्मी बन जाएगा। एक सूरत यह है कि मसलन इमाम के कहने के बावजूद ये एक साल यहां रहा तो अब भी जिम्मी बन जाएगा और इस पर जिजिया लागू कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि इसने यहां कोई जमीन खरीदी और उस पर खराज मुकरर कर दिया गया, और खराज ये जमीन पर टैक्स है भाई, और ये भी साल में एक दफा देना पड़ता है। तो अगर इसकी जमीन पर खराज मुकरर कर दिया गया तो इस सूरत में भी यह जिम्मी बन जाएगा। जब इसकी जमीन पर खराज मुकरर हुआ तो इसकी अपनी जात पर भी जिजिया आ जाएगा। तो ये दूसरी सूरत है। और तीसरी सूरत ये है कि कोई हरबिया औरत जो है दारुल इस्लाम आती है और किसी जिम्मी से या मुसलमान से निकाह कर लेती है। कोई हरबिया है भाई, ईसाई या यहूदिया है, तो मुसलमान के लिए भी उसे निकाह जायज। तो हरबिया औरत दारुल इस्लाम आई और यहां के रहने वाले जिम्मी से या मुसलमान से उसने निकाह कर लिया, तो इस सूरत में भी ये जिम्मिया बन जाएगी। तो अब ये पहली सूरत जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वह इदा अका महा बादा मकालतिल इमामी, और जब वह मुस्तामिन इतनी मुद्दत रहा इमाम के कहने के बाद, अका महा हा जमी राजे है मुद्दत को, वह इदा अकामहा और जब वो मुस्तामिन ये मुद्दत उसने इकामत इख्तियार कर ली, बाद मकालतिल इमामी इमाम के कहने के बाद, यसीरु जिम्मियन तो ये जिम्मी बन जाएगा, लिमा कुलना उस वजह से जो हमने कहा, कि इमाम के कहने के बाद भी एक साल रहता है मालूम है ये खुद ही जिम्मी बनने पर राजी है। सुमला युतरकु अयर जिया इला दारिल हरबी, फिर इसको नहीं छोड़ा जाएगा कि यह दारुल हर्ब वापस चला जाए, फिर इसको दारुल हर्ब वापस जाने की इजाजत नहीं होगी, यह जिम्मी बन गया है। हां अलबत्ता अगर इस पर इत्मीनान है फिर इसको तिजारत के लिए जाने की इजाजत होगी। जैसे किसी मुसलमान को दारुल हर्ब जाने की इजाजत होती है तिजारत के लिए, यह जो नया जिम्मी है इसको भी वहां जाने की इजाजत होगी जब यह इत्मीनान हो कि यह वापस आएगा। भाई कहते हैं सुम मलायू तरकु अयर जिया इला दारिल हरबी, फिर इसको नहीं छोड़ा जाएगा कि यह दारुल हर्ब वापस चला जाए, ले अन अक्द जिम्मती ला युन कजू, इसलिए क्योंकि अकद जिम्मा जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, कैफा और उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, व अन नफी ही कत अल जिजियती व जल वलदही हर बन अलैना वफी ही मजरतुम बिल मुस्लिमीना। कहते हैं भाई अकद जिम्मा को नहीं तोड़ा जा सकता और इसके तोड़ने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, इसमें तो मुसलमानों का नुकसान है कि इससे पहले सालाना जिजिया वसूल होता था, अब वो जिजिया भी खत्म हो जाएगा और नीज ये दारुल हर्ब में जाकर रहेगा तो इसकी जो औलाद है वो तो हमारे दुश्मन होंगे, वो मुस्तकबिल में हमारे साथ लड़ाई करेंगे। भाई तो कहते हैं ले अन्ना अक्द जिम्मती ला युनकजू, इसलिए क्योंकि अक्द जिम्मा जो है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, कैफा और उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, वह अन नफी ही कत अल जिजियती और इसके अंदर तो जिजिये को काटना है, वह जल वलदी ही हर बन अलैना और इसकी औलाद को हमारे खिलाफ दुश्मन बनाना है, वफी ही मजर्रतुम बिल मुस्लिमीना और इसके अंदर मुसलमानों का नुकसान है। आगे देखिए फईन दखल अल हरबी युदारना, मैंने बतलाया था भाई तीन सूरतें जिक्र करेंगे जिम्मी बनने की, तीन सूरतें, एक सूरत यह कि साल से ज्यादा रहा तब भी जिम्मी बन जाएगा और अगर उसकी जमीन पर खराज मुकर्रर कर दिया गया फिर भी वो जिम्मी बन जाएगा, अब वो जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं फईन दखल अल हरबी युदारना भी अमानी, अगर कोई हरबी हमारे दार में दाखिल हुआ अमान लेकर, फश्तरा अर्जा खराजिन फिर उसने कोई खराजी जमीन खरीद ली, फईजा वुजिया अलैहिल खराजु तो जब उस पर खराज मुकर्रर कर दिया जाए, फहुवा जिम्मियुन तो वो जिम्मी है, जब उस पर खराज मुकर्रर कर दिया जाए तो वो जिम्मी बन गया। मालूम हुआ खराज का मुकर्रर करना शर्त है और जब शर्त पाई जाएगी तो मशरूत भी पाया जाएगा, यानी ये जिम्मी बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फईदा वुज़िआ अलैहिल खराज फहुवा जिम्मियुन, तो जब उस पर खराज मुकर्रर कर दिया जाए तो वो जिम्मी है, लिअन्ना खराज अल अर्ज़ बिमंज़िलति खराजिर रास, इसलिए क्योंकि जमीन का खराज ये रास के खराज के दर्जे में है। भाई एक है जमीन का खराज वो जो सालाना टैक्स दिया जाता है और एक है रास का खराज, रस से मुराद जात है क्योंकि रस बोलकर पूरी जात अरबी में मुराद दी जाती है, तो खराजु रस जो है ये जिजिये को कहते हैं। जिजिया काफिर के हर फर्द पर आता है तो वो क्या हुआ खराजु रस, और एक जमीन पर टैक्स होता है उसे क्या कहते हैं खराजुल अर्ज। भाई तो जैसे खराजुल अर्ज जो है वो ममलिकत इस्लामिया के अहकाम में से एक हुक्म है कि खराजुल अर्ज वसूल किया जाएगा, इसी तरह खराजुल रास यानी जिजिया जो है वो भी ममलिकत इस्लामिया के अहकाम में से एक हुक्म है कि कुफार से सालाना जिजिया वसूल किया जाएगा। तो जब दारुल इस्लाम का एक हुक्म यानी खराजुल अर्ज इसके ऊपर आ गया तो दूसरा हुक्म यानी खराजुल रास यानी जिजिया भी इस पर आ जाएगा। भाई कहते हैं लिअन्ना खराज अल अर्ज बी मंजिलती खराज रासी, इसलिए क्योंकि खराज उल अर्ज जो है वो खराज उल रास यानी जिजिया के दर्जे में है। फैजल तजामा हु, जब इसने खराज उल अर्ज का इल्तिजाम कर लिया यानी अपने ऊपर खराज उल अर्ज को लाजिम कर लिया, सारा मुल्तजिमनिल मुकाम फी दारीना, तो इसने हमारे दार में इकामत का भी इल्तिजाम कर लिया। मुकाम भाई याद रखो, मुकाम मस्दर है, अकाम युकीम इकामतन फहुआ मुकीम, व उकीम युकाम इकामतन फदा का मुकाम। यह मुकाम इसमें मफूल भी है, यही इसमें जर्फ भी है और यही मस्तर मीमी भी है भाई। तो इस मुकाम का क्या माना है? इस मुकाम का माना इकामत के भी है भाई। तो कहते हैं फैदल तजमहू, तो जब इसने इस खराजुल अर्ज का अपने ऊपर इल्तिजाम कर लिया, सारा मुल्तजिमनिल मुकामा, तो इसने इकामत का भी इल्तिजाम कर लिया। फी दारीना, हमारे दार में, इसने हमारे दार में इकामत को भी अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अम्मा भी मुजर्रदी शिरा इला यसीरु जिम्मियन, बाकी सिर्फ जमीन को खरीदने की वजह से यह जिम्मी नहीं बनेगा। लिअन्नहु कद यश्तरी हाल तिजारती, इसलिए क्योंकि कभी कभार मुस्तामिन जो है वो जमीन को तिजारत के लिए खरीदता है, उसको खरीदता है और फिर आगे बेच देता है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु कद यश्तरी हाल तिजारती, इसलिए क्योंकि मुस्तामिन कभी कभार जमीन को तिजारत के लिए खरीदता है। वह इजा लजिमहु खराजुल अर्जी, और जब इस मुस्तामिन पर जमीन का खराज लाजिम हो गया, फबाद अजालिका तलजमहुल जिजियतु, तो उसके बाद इस पर जिजिया भी लाजिम हो गया। लिसनतिम मुस्तकबिलतिन, आने वाले साल के लिए भाई, जिस वक्त इस शख्स पर खराजुल अर्ज लाजिम हो गया तो यह जिम्मी बन गया। जब जिम्मी बन गया अब इसको जिजिया भी देना पड़ेगा, लेकिन जिजिये का एतबार अभी से करेंगे, यानी उसकी मुद्दत इस वक्त से शुरू होगी और पूरे साल के अंदर एक दफा जिजिया अदा करना होता है। तो जो जमाना गुजर चुका है उसके अंदर जिजिया नहीं है, बल्कि जिस वक्त यह जिम्मी बना है। और जिम्मी कब बना? जब इसकी जमीन पर खराज मुकर्रर कर दिया गया तो अब यह जिम्मी बन गया, तो अब मुस्तकबिल वाले साल में जिजिया इससे लिया जाएगा। यह माना है कि वह इदा लजिमहु खराज उल अर्जी, कि जब इस पर जमीन का खराज लाजिम हो गया, फबाद अजालिका तलजमहुल जिजियतु लिसनतिम मुस्तकबिलतिन, तो इसके बाद इस पर जिजिया भी लाजिम हो गया आने वाले साल के लिए। लिअन्नहु यसीरु जिम्मियन बिलुजूमिल खराजी, इसलिए क्योंकि यह जिम्मी बन गया खराज के लाजिम होने की वजह से। फतुअतबरुल मुद्दतु मिन वक्ति वुजूबिही, लिहाजा जिजिये की मुद्दत का एतबार किया जाएगा मिन वक्ति वुजूबिही, उस खराज के वजूब के वक्त से। जिस वक्त खराज वाजिब हुआ है उस वक्त से जिजिये की मुद्दत शुमार की जाएगी। तो यह माना है फतुअतबरुल मुद्दतु मिन वक्ति वुजूब भी, लिहाजा मुद्दत मोतबर होगी उस खराज के वजूब के वक्त से। वकौलुहु फिल किताबी, भाई ये जो ऊपर मतन आया था ये जामे सगीर की इबारत है और इसके अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया फईजा वुजिया अलैहिल खराजू फहुआ जिम्मियुन, कि जब उस पर खराज मुकरर कर दिया जाए तो वह जिम्मी है। मालूम हुआ खराज का मुकर्रर करना यह शर्त है और जिम्मी होना मशरूत है, तो जब खराज मुकर्रर हो जाएगा यह आदमी जिम्मी बन जाएगा। अब उसी की वजाहत कर रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं वकौलुहु फिल किताबी, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का जो कौल आया किताब के अंदर यानी उनकी जामे सगीर के अंदर के फईजा वुजिया अलैहिल खराज फहुआ जिम्मियुन, यह मतन की इबारत नकल कर दी कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का यह जो कौल आया फईजा वुजिया अलैहिल खराज फहुआ जिम्मियुन तसरीहुम बिशर्तिल वज़ई, इसके अंदर खराज मुकरर करने की शर्त की तसरीह है। इसके अंदर खराज मुकरर करने की शर्त की तसरीह है कि यह शख्स जिम्मी कब बनेगा? जब इसकी जमीन पर खराज मुकर्रर कर दिया जाए। मालूम हुआ खराज का मुकर्रर करना यह शर्त है और जिम्मी होना मशरूत है। तो यही बात बयान कर रहे हैं, कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का यह जो कौल है तसरीहुम बिशर्तिल वज़ई, यह खराज के मुकर्रर करने की शर्त की तसरीह है। फयुखर्रजु अलैहि अहकामुन जम्मतुन, जम्मा का माना कसीर, फयुखर्रजु अलैहि अहकामुन जम्मतुन, तो इस पर कसीर अहकाम निकाले जाएंगे। फला युगफलु अनहु, लिहाजा इससे गाफिल ना हुआ जाए। इस शर्त से गाफिल ना हुआ जाए। तवज्जो है, यानी इसकी वजह से बहुत सारे अहकाम आ जाएंगे। जब उस मुस्तामीन की जमीन पर खराज मुकरर कर दिया तो वो जिम्मी बन गया, जब जिम्मी बन गया तो अब बहुत से अहकाम आ जाएंगे, अब ये दारुल हर्ब वापस नहीं जा सकता। इसी तरह अब इसके और मुसलमानों के दरमियान किसास जारी होगा, हालांकि इससे पहले मुस्तामीन था, मुस्तामीन को कोई कत्ल कर दे तो ना वहां किसास आता है और ना दियत आती है, क्योंकि उसका खून हमेशा के लिए महफूज नहीं, वो तो थोड़े दिनों के लिए आया है तो उसको हुरमत मुअब्बदा हासिल नहीं। तो मुस्तामीन को दारुल इस्लाम में कोई कत्ल कर दे तो वहां ना किसास आता है और ना दियत आती है, लेकिन जब यह जिम्मी बन गया तो इसके कत्ल की वजह से किसास भी आएगा और दियत भी आएगी भाई। और इसी तरह अगर इसके शराब या खिंजीर हैं, उनको कोई मुसलमान नुकसान पहुंचा देगा तो मुसलमान को जमान देना पड़ेगा, क्योंकि उस जिम्मी के नजदीक तो यह माले मुतकव्विम है भाई। इसी तरह किसी मुसलमान को इजाजत नहीं होगी कि इसके जान या माल को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए भाई। बात समझ में आ गई, यह माना है फयुखर्रजु अलैहि अहकाम मुंजम्मतुन, तो इस पर बहुत से अहकाम निकाले जाएंगे, फला युगफलु अनहु, लिहाजा इस शर्त से गाफिल न हुआ जाए। वह इदा दखलत हरबी यह तुम भी अमान इन फतजा वजत जिम्मीयन सारा जिम्मीयतन, ये तीसरी सूरत जिक्र कर रहे हैं। एक हरबिया दारुल इस्लाम आई और यहां अगर इसने किसी जिम्मी से या मुसलमान से निकाह कर लिया तो यह जिम्मिया बन जाएगी। तो कहते हैं वह इदा दखलत हरबी यह तुम भी अमान इन, और जब कोई हरबिया औरत जो है अमान के साथ दाखिल हुई यानी दारुल इस्लाम में, फतजा वजत जिम्मीयन, तो फिर इसने जिम्मी से निकाह कर लिया, सारा जिम्मीयतन, तो यह जिम्मिया बन जाएगी। जब जिम्मी से निकाह की वजह से जिम्मिया बन रही है तो मुसलमान से निकाह की वजह से भी जिम्मिया बनेगी भाई। तो कहते हैं सारा जिम्मीयतन ये जिम्मिया बन जाएगी, लिअन्नहल तजमतिल मुकामा, इसलिए क्योंकि इसने इकामत का इल्तिजाम कर लिया, इसने यहां पर इकामत का यानी रहने को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, तबान लिज़ौजी, खावंद के ताबे होकर। वह ईजा दख, हां लेकिन इसके बरअक्स भाई, एक हरबी दारुल इस्लाम आया और इसने यहां एक जिम्मिया औरत से निकाह कर लिया, तो यह हरबी मर्द जो है यह जिम्मी नहीं बनेगा। वजह यह है क्योंकि यह तो किसी भी वक्त इस औरत को तलाक देकर दारुल हर्ब वापस जा सकता है, जबकि औरत जब आई थी और उसने जिम्मी से निकाह किया था तो वहां तो तलाक खावंद के इख्तियार में थी, लिहाजा वो जुदाई इख्तियार करके वापस जाने पर कादिर न रही भाई। तो कहते हैं वह इदा दखल हरबी युम भी अमान इन, और जब कोई हरबी अमान के साथ दाखिल हुआ, फतजा वजा जिम्मीयतन, तो उसने किसी जिम्मिया से निकाह कर लिया, लम यसिर जिम्मीयन, तो यह हरबी काफिर जो है यह जिम्मी नहीं बनेगा, लिअन्नहु युमकिनुहु अन युतल्लिकहा, इसलिए क्योंकि इसके लिए यह मुमकिन है कि इस औरत को तलाक दे दे, फयरजिउ इला बलदिही, फिर वापस अपने शहर चला जाए, फलम यकुन मुल्तजिमन इल मुकामा, तो ये इकामत का इल्तिजाम करने वाला न हुआ, जिसने यहां पर इकामत को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। आगे देखिए, वलौ अन्न हरबियन दखल दारना भी अमान इन, भाई सूरत मसला ये, एक हरबी अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया है और यहां उसने कोई अमानत रखवा दी किसी मुसलमान या जिम्मी के पास, या मुसलमान या जिम्मी से इसने कोई बैअ वाला मामला किया और उन पर दैन है, उस मुसलमान या जिम्मी ने दैन अदा करना है इसे, फिर ये वापस चला गया दारुल हर्ब, फिर इसको ख्याल आया कि मैंने तो अपने पैसे वसूल करने थे, ये वापस आ गया, कहते हैं भाई इसका अमान बातिल हो चुका है, इसलिए क्योंकि जैसे ही ये दारुल हर्ब में दाखिल हुआ अमान खत्म हुआ, लिहाजा अब अगर ये आया है बगैर अमान के तो इसकी जान भी महफूज नहीं और माल भी महफूज नहीं है भाई। कहते हैं वलाओ अन्न हरबी यंदा खला दार ना भी अमानी, और अगर कोई हरबी हमारे दार में अमान के साथ दाखिल हुआ, सुम्मा आद इला दारिल हरबी, फिर वो दारुल हर्ब वापस लौट गया, व तारका वदी आतन इंद मुस्लिमिन औ जिम्मीन, और इसने कोई अमानत किसी मुसलमान या जिम्मी के पास छोड़ी, औ दैन अनफी जिम्मतिम, या उनके जिम्मे में कोई दैन छोड़ा, फकद सार दमहु मुबाहन बिल हौदी, तो इस हरबी का खून मुबाह हो जाएगा बिल औदी, वापस लौटने की वजह से, लिअन नहु अब पाला अमान नहु, इसलिए क्योंकि इसने खुद अमान को बातिल कर दिया, ये जब दारुल हर्ब चला गया तो अमान खत्म, अब अगर आना चाहता है नया अमान लेकर आना पड़ेगा, वरना इसका खून मुबाह है भाई। वह माफी दार इस्लामी में माली ही, और वो जो दारुल इस्लाम में इसका माल है, अला खतरीन, वो खतरे में है। ये हरबी जो वापस आया है, इसका खून मुबाह हो गया और इसका माल जो यहां उसने छोड़ा है वो खतरे में है भाई। कहते हैं वह माफी दार इस्लामी में माली ही अला खतरीन, और उसका वो माल जो दारुल इस्लाम में है वो खतरे में है भाई। खतरे में किस तरह है? कहते हैं फइन उसीरा औ ज़ुहीरा अलद्दारी, कि अगर इसको कैदी बना लिया गया, मुसलमानों ने इसको कैदी बना लिया, औ ज़ुहीरा अलद्दारी, या इसके दार पर गलबा पा लिया गया, मुसलमानों ने उसे फता कर लिया, फकुतिला, फिर इसको कत्ल कर दिया गया, तो सकतत दुयूनुहू, तो इसके सारे दुयून जो यहां मुसलमानों और जिम्मियों पर थे वो सारे साकित हो जाएंगे। तो कहते हैं सकातत दुयूनुहू, इसके सारे दुयून साकित हो जाएंगे, वसारतिल वदीअतु फैअन, और इसकी जो अमानत है वो माले गनीमत हो जाएगी। माले फै, माले फै मैंने बतलाया था, एक है माले फै और एक है माले गनीमत। माले गनीमत वो है जिसे मुसलमान लड़ाई के जरिए हासिल करें, और माले फै वो है जो मुसलमानों को बगैर लड़ाई के हासिल हो जाए। तो यहां तो फै जिक्र आया, लेकिन मुराद है गनीमत भाई, कि इसका जो माल बतौर अमानत के था किसी मुसलमान या जिम्मी के पास, वो माले गनीमत है, यानी उसको भी माले गनीमत में शुमार किया जाएगा और उसी तरह तकसीम किया जाएगा। तो कहते हैं वसारतिल वदीअतु फैअन, और इसकी अमानत जो है वो माले गनीमत हो जाएगी। आप वजह जिक्र करेंगे कि अमानत वो माले गनीमत क्यों बनेगी, तो कहते हैं अम्मल वदीअतु, तो अमानत जो है, फली अन्नहा फी यदिही तकदीरन, इसलिए क्योंकि वो अमानत तकदीरन अभी भी इसी के कब्जे में है, यानी फर्ज कर लो ये अभी भी उसी के कब्जे में है, इसलिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि मुदा भाई, जिसके पास अमानत रखवाई जाए, मुदा का कब्जा भी मालिक के कब्जे की तरह है, वो मालिक का नाइब है, तवज्जो है, तो वो मालिक का नाइब है, मालिक ने खुद उसे माल दिया था, उसके पास रखवाया था, तो मुदा का कब्जा किसकी तरह? मालिक की तरह। और मालिक को तो हमने कैदी बनाया या कत्ल कर दिया, वो तो माले फै था, जब मालिक माले फै था तो उसने जो माल यहां रखवाया है वो भी सारा क्या बन जाएगा? माले फै बन जाएगा। तो कहते हैं अम्मल वदीअतु, तो जो अमानत है, फली अन्नहा फी यदिही तकदीरन, इसलिए क्योंकि वो अमानत अभी भी तकदीरन इसी के कब्जे में है, लिअन्न यदल मुदई कयदिही, इसलिए क्योंकि मुदा का कब्जा भी इसी हरबी के कब्जे की तरह है, फयसीरु फैअन तबअन लिनफसिही, तो ये माल जो है ये माले फै बन जाएगा उसकी जात के ताबे होकर, उस हरबी की जात, उसको हमने कैद कर लिया या कत्ल कर दिया, तो उसकी जात जब माले गनीमत थी तो उसका माल भी माले गनीमत है भाई। वह अम्मत दैनु, आपने कहा इसका दैन साकित हो जाएगा, उसकी क्या वजह है भाई? याद रखो भाई, याद रखो, दैन के अंदर एक आदमी के जिम्मे में माल होता है, एक आदमी के जिम्मे में माल है, कोई माल मुतय्यन नहीं है कौन सा माल है, हां बस उसके जिम्मे है कि वो इतना माल अदा करेगा। तो दैन जो है वो किसी के जिम्मे में होता है, और वो मुतालबे के जरिए साबित होता है कि आप उससे मुतालबा करेंगे तो वो फिर आपके हवाले करेगा। तो जब यहां मुतालबा ही ना रहा तो वो दैन भी साकित हो गया, क्योंकि हरबी को तो हमने कैद कर लिया है या कत्ल कर दिया है, तो अब मुतालबा ना रहा। और दैन का इस बात ही किस तरह होता था? मुतालबे के जरिए, कि वो जिसका कर्ज होता था वो उसका मुतालबा करता है भाई। तो जब मुतालबा साकित हुआ तो दैन भी साकित हो गया। कहते हैं वह अम्मत दैन, तो दैन जो है, फली अन्न इस बात अलिया दिया ले ही, इसलिए क्योंकि उस पर कब्जे का साबित करना, विवासिततिल मुतालबती, वो मुतालबे के जरिए होता है, वकद सकतत, और वो मुतालबा तो साकित हो गया क्योंकि ये शख्स कत्ल किया जा चुका है या कैदी बनाया जा चुका है, व यदुमन अलै ही असबकू इलै ही मिन यदिल आम्मति फयख्तसु बिही फयस्कुतु, और नीत इसलिए क्योंकि दैन पर उस शख्स का कब्जा है, दैन उस मुसलमान या जिम्मी के जिम्मे है, तो उनका इस दैन पर कब्जा है, तो उनका कब्जा इस दैन पर मुकद्दम है मुसलमानों के कब्जे से, जब मुसलमानों के कब्जे से मुकद्दम है तो लिहाजा वो दैन जिसके जिम्मे है वही दैन का मालिक बन जाएगा, यानी दैन साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वयदुमन अलैहि, और कब्जा उस आदमी का जिसके ऊपर वो देन है, असबकु इलैहि, उसका कब्जा मुकद्दम है उस देन पर, मीन ये दिल आम्मति, आम मुसलमानों के कब्जे से, फयख्तसु बिही, तो ये देन उसी के साथ खास हो जाएगा, फयस्कुतु, तो साकित हो जाएगा। तर्जमा समझ में आया, फिर तर्जमा देख लीजिए, वयदु मन अलैहि असबकु इलैहि, और वो आदमी जिसका इस देन पर कब्जा है, वो कब्जा इस पर मुकद्दम है, मीन यदिल आम्मति, आम मुसलमानों के कब्जे से, फयख्तसु बिही, लिहाजा ये देन उसी के साथ खास हो जाएगा, फयस्कुतु, तो ये साकित हो जाएगा। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि अगर साहिब देन का कब्जा मुकद्दम है देन पर, तो साहिब वदीअत का कब्जा भी तो मुकद्दम था देन पर, लिहाजा वो वदीअत का मालिक उसी को हो जाना चाहिए, लेकिन उसे आप माले गनीमत करार देते हैं। कहते हैं नहीं भाई, दोनों में फर्क है, हमने आपको बतलाया देन जो होता है वो किसी के जिम्मे में साबित होता है, देन कोई मुतायन माल नहीं होता भाई, बल्कि एक शख्स के जिम्मे में होता है, जबकि अमानत, अमानत तो एक अलग माल है, और उस पर जो मुदा का कब्जा है वो किसकी तरह है, मुदिया के कब्जे की तरह, अमानत रखवाने वाले के कब्जे की तरह है। तो वदीयत पर जो कब्जा था वो तकदीरन अभी भी उसी हरबी का था, लेकिन दैन पर हरबी का कब्जा नहीं था, तो दोनों में फर्क है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, व इन कुतिला वलम युजहर अलदारी, भाई हरबी जो है, हरबी अमान लेकर आया था और किसी मुसलमान या जिम्मी के पास उसकी अमानत है या उसका देन है, और फिर हरबी वापस चला गया, तो इन्होंने आपको बतलाया कि अगर उसको मुसलमानों ने कैद कर लिया या वहां पर हमने कब्जा कर लिया और उसको कत्ल कर दिया, तो फिर इस सूरत के अंदर दुयून साकित हो जाएंगे और वो जो अमानत है वो माले फै है भाई, वो माले गनीमत है भाई। लेकिन अगर मुसलमानों ने इनके दार को फतह नहीं किया और वैसे ही उस जिम्मी को किसी ने कत्ल कर दिया या वो वैसे ही तबई मौत मर गया, तो इन तमाम सूरतों में अभी भी वो अमानत और वो देन उसी का है, वो माल अभी भी उसी का है, लिहाजा वो उसके वारिसों को दिया जाएगा भाई। तो कहते हैं वह इन कुतिला वलम युजहर अलदारी, और अगर उस हरबी को कत्ल कर दिया गया, वलम युजहर अलदारी, इस हाल में कि उसके दार पर कब्जा नहीं किया गया, फल कर्ज वल वदी अतुली वरासती ही, तो वो जो कर्ज है और वो जो अमानत है उसके वारिसों के लिए है, वह कदाली का ईदा माता, और इसी तरह है हुक्म जब यह खुद मर जाए, यानी तबई मौत मर जाए, लिअन्न नफ्सहु लम तसिर मगनूमतन, इसलिए क्योंकि इसकी अपनी जात माल गनीमत मत नहीं बनी, फकजालिका मालूहू, तो इसी तरह इसका माल भी होगा, यानी वो भी माले गनीमत नहीं बनेगा, वहां जा, और ये इस वजह से, लिअन्न हुक्मल अमानी बाकिन फी मालिही, इसलिए क्योंकि अमान का हुक्म बाकी है उसके माल में, फयुरद्दु अलैही, तो ये माल उसको लौटाया जाएगा, औ अला वरसतिही मिन बादिही, या उसके वारिसों को लौटाया जाएगा उसके मरने के बाद। तवज्जो है, अगर हरबी यहां माल अमानत के तौर पर छोड़ गया या देन के तौर पर छोड़ गया, तो यह माल उसी का है, अगर वो जिंदा है तो उसी को लौटाया जाएगा, और अगर उसे किसने कत्ल कर दिया है या वो तबई मौत मर गया है, तो उसके वारिसों को दे दिया जाएगा। आगे देखिए भाई, قال وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج। भाई यहां से साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि वो माल जो मुसलमानों को बगैर लड़ाई के हासिल हो उसको माले फै कहते हैं, और माले फै के अंदर से खुमुस नहीं निकाला जाएगा। माले गनीमत के अंदर तो खुमुस निकाला जाता है और बाकी का माल गाजियों में तकसीम किया जाता है, लेकिन वो माल जो बगैर लड़ाई के मुसलमानों को हासिल हो वो माले फै है, और इसको मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा, यानी ममलिकत के जितने उमूर हैं उनमें खर्च किया जाएगा। तो कहते हैं, काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वमा औजफल मुस्लिमूना, औजफा यूजिफ ईजाफन का माना है अपनी सवारी को या चौपाए को तेज दौड़ाना। औजफा यूजिफ ईजाफ का क्या माना, अपनी सवारी को या चौपाए को तेज दौड़ाना, तो यहां मुराद है मुसलमानों का घोड़े दौड़ाना, यानी मुसलमान जिहाद के लिए गए और इनके रोब और खौफ की वजह से कुफार ने वैसे ही शिकस्त मान ली। तो यहां मुसलमानों को जो माल हासिल हुआ है वो बगैर लड़ाई के हासिल हुआ है, तो ये माले फै है भाई, इसमें से खुमुस नहीं निकाला जाएगा, इसको तमाम मुसलमानों के मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा औजफल मुस्लिमून अलैहिम मिन अमवाली अहलिल हर्बी, और अहले हर्ब के वो माल जिन पर मुसलमान अपनी सवारियों को दौड़ाएं बगैर क़िताल इन बगैर लड़ाई के युसरफु फी मसालिहिल मुस्लिमीन, इसको मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा। कमा युसरफुल खराज, जैसे कि खराज को खर्च किया जाता है, जैसे खराज को मुसलमानों के मसलहत के कामों में खर्च किया जाता है, इसी तरह ये माले फै को भी। قالوا فقهاء فرماتے ہیں هو مثل الاراضی التي اجلوا اهلها عنها والجزیتی, फुकहा फरमाते हैं कि ये जो माले फै है ये भी उन जमीनों के मिसल है जिनके रहने वालों को वहां से निकाल दिया गया हो, और नीज ये जिजिया की तरह है, और जैसे जिजिया और ये जो जमीनें थीं ये सारे मुसलमानों के मसलहत के कामों के लिए होंगी, इसी तरह ये माले फै भी मुसलमानों के मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा। तो कहते हैं कालू फुकहा फरमाते हैं वह मिसलुल अराजी कि ये माले फै उन जमीनों के मिसल है अल्लती अजलौ अहलहा अनहा, अजला यूजली का माना होता है किसी को किसी जगह से निकालना, तो मसलन मुसलमानों ने किसी जगह पर कब्जा किया और वहां के रहने वालों को वहां से निकाल दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। कालू फुकहा फरमाते हैं हुआ मिसलुल अराज़िल लती अजलौ अहलहा अनहा, कहते हैं ये उन जमीनों के मिसल है अल्लती अजलौ अहलहा अनहा कि जिनके रहने वालों को वहां से मुसलमानों ने निकाल दिया हो, ये मालिफ है उसके मिसल है वल जिजियती, और ये जिजिये के मिसल है वला खुमुसा फी जालिका, और इनके अंदर तो खुमुस नहीं होता। ये जमीनें जिनके रहने वालों को वहां से निकाल दिया गया या जैसे जिजिया है इनके अंदर तो खुमुस नहीं होता, तो ये जो माले फै है इसके अंदर भी खुमुस नहीं होगा। तो कहते हैं वला खुमुसा फी जालिका, और इसके अंदर तो कोई खुमुस नहीं है। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह ताला, और इमाम शाफिई रहमहुल्लाह फरमाते हैं फी हिमल खुमुस, इन दोनों में खुमुस है, यानी ये जमीनें जिनके रहने वालों को वहां से निकाल दिया गया, और जो जिजिया है इनके अंदर खुमुस होगा। जबकि शारहीन फरमाते हैं कि यहां तो आया इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कौल जिक्र हुआ फीही मल खुमुसु, जबकि बाद नुस्खों के अंदर यहां वाहिद मुअन्नस की जमीर है फी हल खुमुसु, कि इन सब में खुमुस है, यानी चाहे खराज हो या ये जमीनें हैं या ये जो जिजिया है इन सब के अंदर खुमुस होगा भाई। तो कहते हैं वकाल शाफिई रहमहुल्लाह ताला फीहिमल खुमुस, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों में खुमुस है एतबारम बिल गनीमती, गनीमत पर कियास करते हुए, एतबारम बिल गनीमती, गनीमत पर कियास करते हुए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं जैसे गनीमत के अंदर खुमुस होता है इसी तरह ये जिजिया वगैरह में भी खुमुस होगा। वलना, और हमारी दलील जो है मारुविया, वो हदीस है जिसको रिवायत किया गया है कि अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु अखज़ल जिजिया था, कि हुजूर अलैहि सलाम ने भी जिजिया लिया। वकज़ा उमर व मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, और इसी तरह हजरत उमर और हजरत मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी जिजिया लिया। वुज़िअ फी बैतिल माली, और वो जिजिया बैतुल माल में रखा गया। वलम युखमस, और उसमें से खुमुस नहीं निकाला गया, मालूम हुआ जिजिये के अंदर खुमुस नहीं है। वली अन्नहु मालुम माखूज़ुम बिकुव्वतिल मुस्लिमीन, और इसलिए क्योंकि ये जो माल है ये जिस पर मुसलमानों ने घोड़े दौड़ाए हैं भाई, ये जो माल फै है, कहते हैं वली अन्नहु मालुम माखूज़ुम बिकुव्वतिल मुस्लिमीन मिन गैर क़िताल, इसलिए क्योंकि ये ऐसा माल है जिसको मुसलमानों की कुव्वत के जरिए लिया गया है मिन गैर क़िताल बगैर लड़ाई के, तो इसके अंदर खुमुस नहीं होगा। बिखिलाफिल गनीमती, बखिलाफ गनीमत के, लिअन्नहु ममलूकुम बिमुबाशरतिल गानिमीना, इसलिए क्योंकि माल गनीमत ममलूक होता है बिमुबाशरतिल गानिमीना, गनीमत हासिल करने वालों के सर अंजाम देने की वजह से। मुबाशरत का माना सर अंजाम देना, मुबाशरतिल गानिमीन गनीमत हासिल करने वालों का सर अंजाम देना, भाई किस चीज को सर अंजाम देना, मफूल महजूफ है यानी किताल को, लड़ाई को। भाई कहते हैं लिया नहू ममलूकुन, इसलिए क्योंकि माल गनीमत जो है वो ममलूक होता है, भी मुबाशरतिल गानिमीना, गनीमत हासिल करने वालों के लड़ाई को सरंजाम देने की वजह से, व भी कुव्वतिल मुस्लिमीना, और मुसलमानों की कुव्वत की वजह से। भाई देखिए ये जो माल गनीमत है मुसलमान इसके मालिक बनते हैं दो वजह से, यहां दो सबब हैं, एक मुसलमानों की कुव्वत और रोब है और दूसरा मुसलमानों की लड़ाई है। तो माले गनीमत में दो सबब पाए गए तो लिहाजा इसमें खुमुस भी आएगा और गाजियों का हिस्सा भी आएगा। लेकिन माले फै उसको तो मुसलमानों ने बगैर लड़ाई के हासिल किया है, तो वहां सिर्फ एक सबब है उसके ममलूक होने का, लिहाजा उसके अंदर खुमुस नहीं आएगा। माले गनीमत के अंदर उसके मालिक बनने के दो सबब थे, एक सबब मुसलमानों की लड़ाई और एक मुसलमानों की कुव्वत, तो वहां दो सबब थे लिहाजा वहां खुमुस निकाला जाएगा और बाकी गाजियों का हिस्सा होगा। और यह माले फैक तो सिर्फ मुसलमानों की कुव्वत और रोब के जरिए हासिल किया गया है, यहां लड़ाई नहीं हुई तो यहां सिर्फ एक सबब है, जब एक सबब है तो यहां पर खुमुस नहीं निकाला जाएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, ले अन्नहु ममलूकुम बि मुबाशरतिल गानिमीना व बि कुव्वतिल मुस्लिमीना, इसलिए क्योंकि माल गनीमत जो है वो मुसलमानों का ममलूक है, गनीमत हासिल करने वालों के लड़ाई सर अंजाम देने की वजह से और मुसलमानों की कुव्वत की वजह से, फस्तुहिक्कल खुमुसु बिमानन, तो खुमुस का इस्तेहकाक आ गया बिमानन एक सबब की वजह से, वस्तहक्कहुल गानिमून बिमानन, और गनीमत हासिल करने वाले भी इसके मुस्तहिक हो गए बिमानन एक सबब की वजह से। इसमें खुमुस का भी इस्तेहकाक आ गया और लड़ने वालों का भी इस्तेहकाक आ गया, वफी हादा सबब वाहिदुन, और ये जिसके ऊपर मुसलमानों ने घोड़े दौड़ाए हैं लेकिन लड़ाई नहीं की, इसके अंदर जो है एक ही सबब है। तो कहते हैं वफी हादा सबब वाहिदुन, और इसके अंदर एक ही सबब है, वह हुआ मा जकर ना हो, और वो है जो हमने जिक्र कर दिया, यानी लड़ाई के बगैर सिर्फ मुसलमानों की कुव्वत और रोब भई, फला माना ली ईजाबिल खुमुसी, लिहाजा कोई सबब नहीं है खुमुस वाजिब करने का। दलील समझ में आ गई भाई। आगे देखिए, व ईदा दखल अल हरबी युदारना भी अमानी व लहुमरा अतुन फी दारिल हर्ब, भाई यहां से यह बयान फरमाएंगे कि कोई हरबी अगर मुसलमान हो जाए तो उसके माल वगैरह का क्या हुक्म है। तो यहां तीन सूरतें बनती हैं। एक सूरत यह है कि वह हरबी अमान लेकर दारुल इस्लाम आया और फिर यहां मुसलमान हो गया। दूसरी सूरत यह है कि वह दारुल हर्ब में ही मुसलमान हो गया और फिर हिजरत करके दारुल इस्लाम आ गया। तीसरी सूरत यह है कि दारुल हर्ब में मुसलमान हो गया लेकिन हिजरत नहीं की, वहीं पर रहता है। तो अब तीनों के अंदर बतलाएंगे कि किस सूरत में उसका माल महफूज है और किस सूरत में उसका माल महफूज नहीं है। कहते हैं वह इदा दखल अल हर्बी युदारना भी अमानिन, और जब कोई हर्बी हमारे दार में दाखिल हुआ अमान के साथ, व लहू मरअतुन फी दारिल हर्बी, और उसकी एक बीवी है जो दारुल हर्ब में है, वह औलादुन सिगारुन व किबारुन, और इसी तरह उसकी नाबालिग और बालिग औलाद भी है, व मालुन औदा बाज़हू ज़िम्मियन, और उसका कुछ माल भी है जो उसने अमानत रखवाया है, बाज़हू ज़िम्मियन, उसका कुछ एक जिम्मी के पास, व बाज़हु हर्बियन, और कुछ माल उसने हर्बी के पास अमानत रखवाया है, व बाज़हु मुस्लिमन, और उस माल का कुछ हिस्सा उसने मुसलमान के पास अमानत रखवाया है, फअस्लमा हा होना, फिर वो हर्बी यहां मुसलमान हो गया। सूरत समझ में आ रही है, हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम आया और यहां आकर वह मुसलमान हुआ है, और इसकी बीवी और इसकी औलाद चाहे बालिग है या नाबालिग है वो सारे दारुल हर्ब में हैं। इसी तरह दारुल हर्ब में ही इसने अपना कुछ माल, कोई मुसलमान वहां गया हुआ है या कोई जिम्मी वहां गया हुआ है उनके पास इसने बतौर अमानत रखवाया है, या वहीं के किसी रहने वाले हर्बी के पास इसने अपना कुछ माल बतौर अमानत के रखवाया है, और फिर उसके बाद इसके दार पर मुसलमानों ने कब्जा हासिल कर लिया, मुसलमानों ने उस इलाके को फतह कर लिया, तो कहते हैं इसका सारा माल वो माल गनीमत शुमार होगा। चाहे इसकी बीवी है, चाहे इसके बालिग या नाबालिग औलाद है, चाहे वो माल जो इसने दारुल हर्ब में ही किसी मुसलमान या जिम्मी या हरबी के पास बतौर अमानत के रखवाया था, ये सारा कुछ माल गनीमत में शुमार होगा। भाई क्यों, क्या वजह है माल गनीमत में क्यों शुमार होगा? कहते हैं वजह यह कि यह माल इसके कब्जे में नहीं है। जो शख्स मुसलमान हो जाए वो अपनी जान को भी महफूज कर लेता है और जो माल उसके कब्जे में होता है उसको भी महफूज कर लेता है, लेकिन ये तो दारुल इस्लाम के अंदर मुसलमान हुआ है और इसका माल चाहे वो अमानत के तौर पर है किसी जिम्मी या मुसलमान के पास, लेकिन वो तो मुसलमान या जिम्मी तो दारुल हर्ब में है भाई, तो लिहाजा वो माल इसके कब्जे में नहीं। जब इसके कब्जे में नहीं तो वो सारा माल गनीमत शुमार होगा, और नीस नाबालिग औलाद जो है वो भी माल गनीमत शुमार होगी। भाई इसकी क्या वजह है? नाबालिग औलाद तो अगर बाप मुसलमान हो जाए तो नाबालिग औलाद भी मुसलमान शुमार होती है। कहते हैं भाई नाबालिग औलाद तब मुसलमान शुमार होगी जब बाप को उन पर विलायत हासिल हो, और बाप तो इस वक्त दारुल इस्लाम में है और नाबालिग औलाद तो दारुल हर्ब में है, तो इसको उन पर विलायत ही हासिल नहीं है। जब विलायत हासिल नहीं तो उनको इसकी वजह से मुसलमान शुमार नहीं किया जाएगा, लिहाजा वो भी माले गनीमत में शुमार होंगे। तफसील समझ में आ गई। तो कहते हैं कि इसकी बीवी भी दारुल हर्ब में है, वह औलाद उन सिगार हुआ की बार उन, और इसकी नाबालिग और बालिग औलाद जो है वो भी दारुल हर्ब में है, वह माल उन औदा बाजहू जिम्मीयन व बाजहू हर्बीयन व बाजहू मुस्लिमन, और इसका कुछ माल है कि उसका कुछ हिस्सा इसने जिम्मी के पास बतौर अमानत रखवाया है और कुछ हिस्सा हरबी के पास, व बाजहू मुस्लिमन और बाज हिस्सा उसने मुसलमान के पास अमानत रखवाया है। और ये याद रखना, ये मुसलमान और जिम्मी जिनके पास इसने माल अमानत रखवाया है ये दारुल हर्ब में ही हैं। अगर दारुल इस्लाम के अंदर हैं, अगर ये मुसलमान या जिम्मी जिनके पास इसने अमानत रखवाई है अगर ये दारुल इस्लाम में हैं, तो मुसलमान और जिम्मी हुए मुदा, और मुदा का कब्जा भी किसकी तरह होता है? मालिक के कब्जे की तरह। तो जब ये जिम्मी मुसलमान हुआ तो इसने अपनी जान भी महफूज कर ली और जो माल इसके कब्जे में है उसको भी महफूज कर लिया। तो ये वो सूरत जिक्र हो रही है कि इसने जो माल अमानत रखवाया है वो जिम्मी या मुसलमान वो भी दारुल हर्ब में ही हैं। तो कहते हैं इनके पास इसने अमानत रखवाया है, फ असलमा हा हुना, तो यहां पर ये जिम्मी मुसलमान हो गया, सुम ज़ुहिरा अलद्दारी, फिर इनके दार पर गलबा पा लिया गया यानी मुसलमानों ने उसे फतह कर लिया, फजालिका कुल्लुहू फैउन, तो उसका ये सारा माल फै है यानी माल गनीमत है, अम्मल मरअतु व औलादुहुल किबारु, बाकी इसकी बीवी और इसकी जो बड़ी औलाद है यानी जो बालिग औलाद है, फजाहिरुन, तो वो जाहिर है यानी उनका माल गनीमत होना जाहिर है क्योंकि वो इसके ताबे नहीं, लिअन्नहुम हर्बियून किबारुन, इसलिए क्योंकि वो हर्बी हैं, किबारुन बालिग हैं, वो बालिग हर्बी हैं, वलैसू बिअतबाइन, और वो इसके ताबे नहीं है, वकदालिका माफी बतनी हा लौकानत हामिलन, और इसी तरह इसकी वो औलाद जो इसकी बीवी के पेट में है, लौकानत हामिला, अगर इसकी बीवी हामिला है वो भी माले फै है, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कहा, पीछे जिक्र किया था कि बीवी भी माले फै है और अगर ये हामिला है तो इसका हमल भी बीवी का जुज है, और बीवी माले फै है तो उसका जुज भी माले फै है, ये माना है, वकदालिका माफी बतनीहा, और इसी तरह है वो हमल भी जो उसकी बीवी के पेट में है, लौकानत हामिला, अगर वो हामिला है, लिमा कुलना मिन कबलू, उस वजह से जो हमने पहले कहा, व अम्मा औलादुहु सिगारू, और बाकी इसकी जो नाबालिग औलाद है, फली अन्न सगीरा इन नमा यसीरु मुस्लिमन तबअन लि इस्लाम अभी ही, इसलिए क्योंकि नाबालिग जो होता है वो भी अपने बाप के इस्लाम की वजह से ताबिया होकर मुसलमान हो जाता है, ईसा कानफी यदिही व तख्त विलायती ही, जब वो नाबालिग जो है अपने बाप के कब्जे में हो और उसकी विलायत के तख्त हो, व मातबा यूनि दारैनी ला यतहक्ककु ज़ालिका, और दोनों दारों के मुख्तलिफ होने की वजह से यह कब्जा और विलायत भी नहीं पाई जा रही, बाप का अपनी नाबालिग औलाद पर कब्जा और विलायत भी नहीं है, तो लिहाजा वो भी माले गनीमत होंगे, व कजा अमवालुहु ला तसीरु मुहरजतन, और इसी तरह इसके माल भी महफूज नहीं होंगे, भी इहराज ही नफसहु, इसके अपनी जात को महफूज कर लेने की वजह से, इसकी अपनी जात तो महफूज हो गई लेकिन इसके अमवाल महफूज नहीं, क्योंकि वो दूसरे दार में है तो उसके अमवाल भी महफूज नहीं है। लिख्तिलाफ ही दार आईनी, दोनों दारों के मुख्तलिफ होने की वजह से फबकियल कुल्लुफे व गनीमतन, तो यह सारा कुछ जो है बाकी रहा फे और गनीमत होकर, यह सारा कुछ माल फे और माल गनीमत होकर बाकी रहा। आगे देखिए वह इन असलम फी दारिल हर्बी, भाई अब दूसरी सूरत है कि हर्बी दारुल हर्ब में ही मुसलमान हो गया और फिर वो दारुल इस्लाम आ गया, तो अब इसकी जो नाबालिग औलाद है वो भी महफूज हो गई क्योंकि ये दारुल हर्ब में ही था जब मुसलमान हुआ है, तो औलाद इसके कब्जे में है और इसकी विलायत में है। और नीज इसने जो माल किसी मुसलमान के पास बतौर अमानत के रखवाया था या किसी जिम्मी के पास, वो माल भी महफूज हो गया क्योंकि ये दारुल हर्ब में ही था जब मुसलमान हुआ है, तो इसका माल भी इसी के अपने कब्जे में है। जब ये महफूज तो इसका माल भी महफूज, और जो जिम्मी और मुसलमान का माल पर कब्जा है वो भी इसी के अपने कब्जे की तरह है, तो जब इस्लाम की वजह से इसकी अपनी जान महफूज हुई तो इसका वो माल भी महफूज हो गया। तो कहते हैं वह इन असलम फी दारिल हर्बी, और अगर हर्बी दारुल हर्ब में ही मुसलमान हो गया, सुम जा आ फिर वो दारुल इस्लाम आ गया, फजोहिरा अलद दारी फिर उनके दार पर गलबा हासिल कर लिया गया, व औलादुहु सिगारु अहरारु मुस्लिमूना तो इसकी जो नाबालिग औलाद है वो आजाद होंगे मुसलमान होंगे, तबअन लि अबीहिम अपने बाप के ताबे होकर, लि अन्नहुम कानू तहत विलायतिही इसलिए क्योंकि वो सारे इस बाप की विलायत के तहत थे, हीन असलमा जिस वक्त ये मुसलमान हुआ, क्योंकि ये दारुल हर्ब में ही मुसलमान हुआ था, इज दारु वाहिदतुन इसलिए क्योंकि दार एक ही है, ये भी दारुल हर्ब में मुसलमान हुआ और इसकी नाबालिग औलाद भी दारुल हर्ब में ही थी, तो इसकी औलाद भी महफूज हो गई। वमा कान मिन मालिन औ दाहु मुस्लिमन औ जिम्मियन फहुवा लहू, और इसका वो माल जो इसने बतौर अमानत के रखवाया है किसी मुसलमान के पास या जिम्मी के पास, फहुवा लहू तो वो माल भी इसी का है। बात समझ में आ गई, क्योंकि मुदा का कब्जा भी किसकी तरह है, मुदे के कब्जे की तरह है, गोया वो इसी के कब्जे में है। तो कहते हैं फहुआ लहू तो वो माल भी इसी का है, ले अन्नहू फी यदि मुहतरमतिन इसलिए क्योंकि वो माल जो है वो एक मुहतरम कब्जे में है, क्योंकि जिम्मी और मुसलमान का कब्जा मुहतरम है, इज्जत वाला है। तो कहते हैं लिअन नहू फी यदि मुहतरमतिन इसलिए क्योंकि वो माल जो है एक मुहतरम कब्जे में है, व यदुहू का यदि ही और इस मुसलमान या जिम्मी का कब्जा जो है इसी मालिक के कब्जे की तरह है। वमा सिवा जालिका फै उन और इसके अलावा जो इसका माल है वो माल फै है यानी माल गनीमत है, यानी उसकी बीवी है या इसी तरह बालिग औलाद है या इसका माल जो किसी मुसलमान या जिम्मी ने या हर्बी ने गसब किया है तो ये सारा मालिफ है। इसी तरह अगर इसने किसी हर्बी के पास अमानत रखवाई है तो हर्बी का कब्जा तो मुहतरम नहीं, लिहाजा वो भी माले फै है यानी माले गनीमत है भाई। तो कहते हैं वमा सिवा जालिका फै उन और इसके अलावा जो माल है इसका वो माले फै है, अम मलमर अतु व औलादुहुल किबारु तो इसकी बीवी और जो इसकी बालिग औलाद है वो माले फै है, फलिमा कुल ना उस वजह से जो हमने कहा क्योंकि वो इसके ताबे नहीं, वो बालिग हर्बी हैं। वह अम्मल मालुल लदीफी यदिल हर्बी ये और बाकी वो माल जो हर्बी के कब्जे में है, फली अन्नहु लम यसिर मासूमन तो वो मासूम और महफूज नहीं हुआ, लि अन्न यदल हर्बी ये लैसत यदम मुहतरमतन इसलिए क्योंकि हर्बी का कब्जा जो है वो मुहतरम कब्जा नहीं, उसका कोई एहतराम नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, वह इदा असलम अल हर्बी युफी दारिल हर्बी फकतलहु मुस्लिमुन आमदन औ खतअन वलहु वरसतुम मुस्लिमून हुनालिका फला शैअ अलैहि इल्लल कफारतु फिल खता। भाई ये मसला पहले गुजर चुका है कि दारुल हर्ब में अगर कोई शख्स मुसलमान हो जाए तो उसको इस्मत मुअस्सिमा तो हासिल हो जाती है लेकिन इस्मत मुतकव्विमा नहीं, लिहाजा कोई मुसलमान अगर उसको कत्ल कर देता है तो उसकी वजह से न किसास वाजिब होगा और न दियत वाजिब होगी, क्योंकि ये जो दारुल हर्ब में जो मुसलमान हुआ था इसको अभी तक इस्मत मुतकव्विमा हासिल नहीं, और ये जो किसास और दियत आती है वो इस्मत मुतकविमा की वजह से आती है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये जो दारुल हर्ब में ये शख्स मुसलमान हुआ है इसको इस्मत मुअस्सिमा भी हासिल है और इसको इस्मत मुतकविमा भी हासिल है। वो फरमाते हैं कि इस्मत मुअस्सिमा असल है और इस्मत मुतकविमा उसकी सिफत है। तो जब इस आदमी को इस्मत मुअस्सिमा हासिल है और बिल इत्तेफाक अहनाफ भी कहते हैं कि यह शख्स जो दारुल हर्ब में मुसलमान हो गया इसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल है, और इस्मत मुअस्सिमा है असल और इस्मत मुतकविमा उसके ताबे है, यह उसके लिए वसफ के दर्जे में है। तो इस शख्स को जब इस्मत मुअस्सिमा हासिल हुई तो इस्मत मुतकविमा भी हासिल हो गई। लिहाजा इस आदमी को अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको कत्ल का अजीम गुना भी होगा और उस पर कफारा भी आएगा, और अगर इसने यह जानबूझकर इसको कत्ल किया है तो किसास आएगा, और अगर गलती से कत्ल किया है तो दियत आएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मजहब चल रहा है भाई हमारे नजदीक तो इस शख्स को इस्मत मुतकविमा हासिल ही नहीं, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसको इस्मत मुतकविमा हासिल है, लिहाजा कत्ल अम्द की सूरत में किसास आएगा और कत्ल खता की सूरत में दियत आएगी, और नीज इस्मत मुअस्सिमा भी इस आदमी को हासिल है, लिहाजा इसकी वजह से कफारा भी वाजिब होगा। भाई देखिए भाई कहते हैं वह ईदा असलम अल हरबी युफी दारिल हरबी, जब कोई हरबी मुसलमान हो गया दारुल हर्ब में, फकतलहू मुस्लिमुन अमदन औ खतअन, फिर उसको किसी मुसलमान ने जानबूझकर या गलती से कत्ल कर दिया, वलहू वरसतुम मुस्लिमुनहु नालिका, और उस मकतूल के वहां पर वरसा भी हैं, उस मकतूल के वहां पर वो रसा भी हैं जो यानी किसास या दियत वसूल कर सकते हैं। तो कहते हैं वलहू वरसतुम मुस्लिमुनहु नालिका, और इस मकतूल के वहां पर मुसलमान वरसा भी हैं, फला शैअ अलैही, तो हमारे नजदीक इस कातिल पर कोई चीज नहीं है यानी न किसास आएगा और न दियत आएगी, इल्लल कफारतु फिल खताई, सिवाय कफारे के कत्ले खता के अंदर, तो हमारे नजदीक सिर्फ कफारा आएगा और वो भी कत्ले खता की सूरत में, क्योंकि कत्ले अम्द के अंदर हमारे नजदीक कफारा नहीं आता। भाई वकाल शाफी रहमहुल्लाह ताला, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं तजिबुद्दियत फिल खताई, के कत्ल खता के अंदर दियत वाजिब होगी, वल किसास फिल आमदी, और कत्ल आमद के अंदर किसास वाजिब होगा, लिअन्नहु अरा कदम मासूमन, इसलिए क्योंकि इस शख्स ने एक मासूम और महफूज खून को बहाया है, लि वजूद अल आसिमी, बवजह आसिम के पाए जाने के, आसिम यानी बचाने वाली चीज, इस्मत देने वाली चीज, और इस्मत देने वाली चीज क्या है, वो फरमाते हैं इस्लाम है। हमारे नजदीक तो इस्मत मुतकविमा दारुल इस्लाम से साबित होती है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का कोई एतबार नहीं, दारुल इस्लाम तो जमीन के एक टुकड़े का नाम है, यह तो जमादात में से एक बेजान चीज है भाई, बल्कि यहां पर जो इस्मत हासिल हो रही है वो इस्लाम की वजह से हासिल हो रही है, इसलिए क्योंकि इस्लाम की वजह से इंसान को हर तरह की इज्जत हासिल होती है, और इस्मत का हासिल होना यह भी एक इज्जत और इनाम की बात है, लिहाजा इस्लाम की वजह से इंसान को इस्मत हासिल होती है। तो कहते हैं लिअन्नहु अरा कदम मासूमन, इसलिए क्योंकि इस शख्स ने मासूम खून बहाया है, लिवजूद अल आसिमी, बवजह इस्मत देने वाली चीज के पाए जाने के, वहुवल इस्लाम, और वो इस्लाम है, लिकौनिही मुस्तजलिबन लिल करामती, इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो लाने वाला है इज्जत और बुजुर्गी को, करामत का क्या माना, इज्जत और बुजुर्गी, इस्लाम जो है बुजुर्गी और इज्जत लाता है, इसकी वजह से इंसान जो है मुअज्जज बन जाता है, और इस्मत का हासिल होना यह भी एजाज की बात है, तो लिहाजा इस्लाम की वजह से इसको इस्मत हासिल हुई है। तो कहते हैं लिकौनिही मुस्तजलिबन लिल करामती, इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो बुजुर्गी को और इज्जत को लाने वाला है, वहाजा, और यह इस वजह से, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तकरीर चल रही है, कहते हैं ये जो दियत और किसास वाजिब होगा उसकी वजह ये है। अब वो बयान करने लगे हैं, कहते हैं वहादा, और ये जो दियत और किसास का वाजिब होना है वो इस वजह से है, लिअन्नल इस्मत असलुहल मुअस्सिमतु, इसलिए क्योंकि इस्मत जो है इसके अंदर असल इस्मत मुअस्सिमा है, लिहुसूल असल जजरी बिहा, क्योंकि असल डांट और असल सजा इसी के जरिए है, असल डांट और सजा इसी के जरिए है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो भी इंसान फितरत सलीमा पर होता है वो अपने आप को आखिरत के गुनाह से बचाने की कोशिश करता है, तो इस शख्स को जो भी कत्ल करेगा उसको कत्ल का अजीम गुनाह होगा, तो जो भी फितरत सलीमा वाला होगा वो इस गुनाह से अपने आप को बचाएगा। तो जब भी कोई शख्स इस्लाम ले आता है तो बिल इत्तेफाक सबके नजदीक इसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो जाती है, जो भी इसको कत्ल करेगा उसको कत्ल का अजीम गुनाह होगा, और हर सलीमुल फितरत इंसान गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लिहाजा यह इस्मत मुअस्सिमा ही डांट और सजा के तौर पर काफी है। दारुल हर्ब में यह शख्स मुसलमान हुआ तो इसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो गई, और इस्मत मुअस्सिमा असल है क्योंकि असल डांट इसी की वजह से हासिल हो जाएगी, इसी की वजह से कोई भी शख्स उस मुसलमान की जान नहीं लेगा भाई। ये माना है, कहते हैं लिअन्नल इस्मत असलुहल मुअस्सिमतु, इसलिए क्योंकि इस्मत जो है असल उसके अंदर इस्मत मुअस्सिमा है, लिहुसूल असल जजरी बिहा, इसलिए क्योंकि असल जजर यानी डांट और सजा इसके जरिए हासिल हो जाती है, वही साबितुन इजमान, और ये इस्मत मुअस्सिमा तो बिल इजमा इस मुसलमान होने वाले के लिए साबित है, वल मुकव्विमतु कमालुन फीही, और इस्मत मुकव्विमा जो है वो इसी इस्मत मुअस्सिमा के अंदर कमाल का नाम है, कि यही इस्मत मुअस्सिमा कामिल हो जाती है इस्मत मुतकव्विमा की वजह से। असल क्या है? इस्मत मुअस्सिमा, तो वो असल है और इस्मत मुतकव्विमा उसका वसफ है, तो इस वसफ के जरिए वही इस्मत मुअस्सिमा कामिल हो जाती है। कहते हैं वल मुकव्विमतु कमाल उनफी ही, और इस्मत मुतकव्विमा जो है वो इस्मत मुअस्सिमा के अंदर कमाल है यानी उसका कामिल होना है, लि कमाल इम्तिनाई भी ही, इसलिए क्योंकि इसके जरिए कामिल तौर पर रुकना होगा। भाई असल तो इस्मत मुअस्सिमा है, जब एक शख्स को पता है कि मैंने अगर इस आदमी को कत्ल किया तो मुझे गुनाह होगा और आखिरत में सख्त सजा मिलेगी, तो फितरत सलीमा वाला शख्स इसी खौफ की वजह से उसे तआरुज ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बास कम अकल लोग फिर भी इस चीज से बाज नहीं आएंगे, लेकिन जब इस्मत मुतकव्विमा भी आ जाएगी तो अब वो भी इस खौफ से कत्ल से रुक जाएंगे कि हमें दुनियावी सजा मिलेगी, किसास या दियत आएगी। तो फितरत सलीमा वाला तो उस गुनाह की वजह से ही रुक जाएगा, लेकिन कुछ कम अकल लोग हो सकता है सिर्फ उस गुनाह से न रुकें, लेकिन जब इस्मत मुतकव्विमा भी हासिल हो जाएगी तो वो कम अकल लोग भी इसके साथ तआरुज से रुक जाएंगे। मालूम हुआ असल इस्मत मुअस्सिमा ही है और इस्मत मुतकव्विमा उसी का वसफ है, और इस्मत मुतकव्विमा के जरिए वो इस्मत मुअस्सिमा कामिल हो जाती है। जब वो कामिल हो गई तो इसके जरिए कामिल रुकना पाया गया, अब सलीमुल फितरत लोग भी रुकेंगे इस कत्ल से और कम अकल भी रुकेंगे, क्योंकि कामिल दर्जे की इस्मत आ गई तो अब रुकना भी कामिल दर्जे का पाया जाएगा। भाई ये माना है वल मुकव्विमतु कमाल उनफी ही, और इस्मत मुतकव्विमा जो है वो इस इस्मत मुअस्सिमा के अंदर कमाल है यानी इसके जरिए वो कामिल होती है, लि कमाल इम्तिनाई भी ही, इसलिए क्योंकि इस्मत मुतकव्विमा के जरिए इम्तिना कामिल हो जाएगा यानी उससे रुकना और बाज आना कामिल हो जाएगा, अब हर एक उससे रुकेगा, सलीमुल फितरत भी और कम अकल भी। भाई फयकून वसफन फीही, तो ये इस्मत मुतकव्विमा जो है ये वसफ होगा इस्मत मुअस्सिमा में, फयतअल्लक बिमा उल्लिक बिहिल असलु, तो लिहाजा ये इस्मत मुतकव्विमा भी मुतअल्लिक होगी उसी चीज के साथ जिसके साथ असल मुतअल्लिक है। इस्मत मुतकव्विमा ये वसफ है और इस्मत मुअस्सिमा असल है, और इस्मत मुअस्सिमा तो इस्लाम से हासिल हो रही है। तो जब असल जो इस्मत मुअस्सिमा है उसका ताल्लुक इस्लाम से है, इस्लाम की वजह से इस्मत मुअस्सिमा हासिल होती है, तो इस्मत मुतकव्विमा जो ताबिअ है और जो वसफ है उसका ताल्लुक भी इस्लाम से होगा, वो भी इस्लाम की वजह से ही हासिल हो जाएगी। लिहाजा यह शख्स जब मुसलमान हो गया है, चाहे दारुल हर्ब में है, लेकिन इस्लाम की वजह से इसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हुई, और जब इस्मत मुअस्सिमा हासिल हुई तो इस्मत मुतकव्विमा भी हासिल होगी, क्योंकि वह भी इसी इस्मत के ताबिअ है। भाई तो यह माना है फयताअल्लकु बिमा उल्लिक बिहिल असलु, तो यह इस्मत मुतकव्विमा भी उसी से मुताल्लिक होगी जिसके साथ असल यानी इस्मत मुअस्सिमा मुताल्लिक है। वला ना, अब हमारी दलील आ गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का हासिल यह है कि उनके नजदीक इस्मत मुअस्सिमा असल है, और इस्मत मुअस्सिमा तो बिल इत्तेफाक सबके नजदीक इस मुसलमान होने वाले को हासिल है, तो वो फरमाते हैं इस्मत मुतकव्विमा इसके ताबे है, वो भी इसको हासिल हो जाएगी। हम कहते हैं नहीं, इस्मत मुतकव्विमा और इस्मत मुअस्सिमा दोनों में से हर एक असल है, कोई एक भी दूसरी के ताबे नहीं है। भाई वलना, और हमारी दलील जो है कौलहु तआला, वल्लाह ताला का यह कौल है फइन कान मिन कौमिन अदुविल लकुम व हुवा मुमिनुन फतहरीरु रकबतिन मुमिना, फइन कान मिन कौमिन अदुविल लकुम, और अगर वो जो मकतूल है जिसको कत्ल किया गया है अगर ये उन लोगों में से है जो तुम्हारे दुश्मन हैं, यानी ये शख्स अगर दारुल हर्ब में है, तवज्जो है, अगर कोई शख्स दारुल हर्ब में मुसलमान हो गया और उसको कत्ल कर दिया गया, तो देखो ये मकतूल किन लोगों में से था, उन लोगों में से है यानी जो हमारे दुश्मन है, यानी दारुल हर्ब में ये मकतूल है, दारुल हर्ब में इसको कत्ल किया गया है, तो वही सूरत कुरान में बयान हो रही है फइन कान मिन कौमिन अदुविल लकुम, और अगर ये मकतूल उन लोगों में से है जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वह हुआ मोमिनुन, इस हाल में कि मकतूल मुसलमान था, मोमिन था भाई, था किन लोगों में से जो मुसलमानों के दुश्मन हैं यानी दारुल हर्ब में था, लेकिन ये खुद क्या था, मोमिन था, तो कहते हैं फइन कान मिन कौमिन अदुविल लकुम, और अगर ये मकतूल उन लोगों में से हुआ जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वह हुआ मोमिनुन, इस हाल में कि ये मकतूल मोमिन है, फतहरीरु रकबतिन मुमिना, तो एक मोमिन गर्दन का आजाद करना है, तो एक मोमिन गर्दन का आजाद करना है। देखो कफारा जिक्र हो रहा है भाई, कफारा, तवज्जो है भाई, देखिए ये आयत का मजीद कुछ हिस्सा ये हाशिए में दिया हुआ है, उसको भी जरा देख लें फिर बात पूरी वाजे हो जाएगी। देखिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अली मुमिनिन अन यक्तुला मुमिनन, और किसी मोमिन के शायान शान नहीं है कि वो किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे, इल्ला खतअन, मगर गलती से, यानी गलती से कोई कत्ल हो जाए, तो वमन कतल मोमिनन खतअन, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे, फतहरीरु रकबतिन मुमिनतिन, तो एक मोमिन गर्दन का आजाद करना है, यानी एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा बतौर कफारे के, वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलीही, और दियत हवाले करनी पड़ेगी उस मकतूल के अवलिया के। अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को गलती से कत्ल कर दे तो इस सूरत में एक मुसलमान गुलाम या बांदी को भी आजाद करना पड़ेगा बतौर कफारे के, वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलीही, और उस मकतूल के अवलिया को दियत भी सुपुर्द करनी पड़ेगी, इल्ला अन यसद्दकू, मगर यह कि वह मकतूल के अवलिया सदका कर दें, यानी उस दियत को माफ कर दें, मकतूल के अवलिया दियत भी देनी पड़ेगी, इल्ला अन यसद्दकू, मगर यह कि वो उस दियत को माफ कर दें। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं फइन कान मिन कौमिन अदुविल लकुम, अगर वो जो मकतूल है वो ऐसे लोगों में से है जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वह हुआ मुमिनुन, इस हाल में कि ये मकतूल मोमिन है, फतहरीरु रकबतिन मुमिना, तो फिर एक मोमिना गर्दन का आजाद करना है। तो कुरान में यह जिक्र है, देखो वैसे आम मोमिन को कोई गलती से कत्ल करे तो वहां अल्लाह ने दो चीजें जिक्र फरमाई, फतहरीरु रकबतिन मुमिनतिन वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलीही, कि कफारा भी देना पड़ेगा और दियत भी देनी पड़ेगी। लेकिन जब दारुल हर्ब के अंदर किसी मोमिन को कत्ल किया जाए तो उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं फइन काना मिन कौमिन अदुविल लकुम वहुवा मुमिनुन फतहरीरु रकबतिन मुमिना, तो दारुल हर्ब में अगर किसी को कत्ल किया जाए उसके बारे में अल्लाह सिर्फ कफारे को जिक्र फरमा रहे हैं, दियत को जिक्र नहीं फरमाया। मालूम हुआ यहां सिर्फ कफारा आएगा, दियत नहीं आएगी। मालूम हुआ वो मुसलमान जो दारुल हर्ब में रहता है उसको इस्मत मुअस्सिमा तो हासिल है लेकिन इस्मत मुतकव्विमा हासिल नहीं है। दलील समझ में आ गई। वलना कौलुहु तआला, और हमारी दलील जो है अल्लाह ताला का ये कौल है फइन काना मिन कौमिन अदुविल लकुम वहुवा मुमिनुन, और अगर वो मकतूल ऐसे लोगों में से हुआ जो तुम्हारे दुश्मन है इस हाल में कि वो मकतूल मोमिन है फतहरीरु रकबतिन मुमिनतिन, तो एक मोमिन गर्दन को आजाद करना है यानी एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना है। अल आया جعل التحرير كل الموجب رجوعا الى حرف الفاء او الى كونه كل المذكور فينتفي غيره। भाई अब साहिब हिदायत दलील जिक्र करने लगे हैं, कहते हैं देखिए इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो आयत का हिस्सा है फइन काना मिन कौमिन अदुविल लकुम वहुवा मुमिनुन फतहरीरु रकबति मुमिना, यहां फा के बाद सिर्फ तहरीर रकब मुमिना जिक्र है। मालूम हुआ कि ये ही जजा है, अगर दारुल हर्ब के अंदर किसी मुसलमान को कोई कत्ल कर दे तो सिर्फ यही जजा है। तो यहां दो तरीके से साहिब हिदायत इसको दलील बनाएंगे। एक सूरत में वो फा को दलील बनाते हैं कि ये फा जो है ये जजा पर दाखिल होती है, ये जजा पर दाखिल होती है। तो गोया असल कलाम यूं है, आयत में तो क्या आया फतहरीरु रकबति मुमिना, लेकिन गोया यूं कहा जा रहा है फजजाउहु तहरीरु रकबति मुमिना। और जजा याद रखो, जजा यजजी जजाअन का माना है काफी होना, जजा यजजी जजाअन का एक माना है बदला देना और एक इसका माना है काफी होना। तो तकदीर कलाम यूं हो गया फजजाउहु तहरीरु रकबति मुमिना, तो उसके लिए एक मोमिन गर्दन का आजाद करना काफी है जी। उसके लिए एक मोमिन गर्दन का आजाद करना काफी है। तकरीर समझ में आई, किसको दलील बनाया फा को, और फा किस पर दाखिल होती है जजा पर, तो गोया ये जजा जिक्र की जा रही है। तो गोया तकदीर कलाम यूं है फजजा उहु तहरीरु रकबति मुमिना, ये जजा का लफ्ज हम कहां से लाए भाई, इस पर फा दलालत कर रही थी, तवज्जो है, तो जजा का लफ्ज मुकद्दर है लेकिन उस पर फा दलालत कर रही थी और जजा का माना है काफी होना। मालूम हुआ दारुल हर्ब में किसी मुसलमान को कोई कत्ल कर देता है तो उसके लिए तहरीर रकबा यानी कफारा काफी है भाई, कफारा काफी है। और नीस इसी को दूसरे अंदाज में यूं दलील बनाते हैं साहिबे हिदाया कि फा के बाद जजा जिक्र है और ये जजा के अंदर सिर्फ कफारा जिक्र है। मालूम हुआ सिर्फ कफारा ही आएगा, यानी जो सारा जिक्र किया गया जजा सारी वही है, इसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि अगर और चीज भी जजा होती तो अल्लाह उसको भी जिक्र फरमाते, जैसे इससे पीछे इसी आयत के अंदर क्या आया फतहरीरु रकबति मुमिनतिन वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, वहां दियत को भी जिक्र फरमाया लेकिन यहां अल्लाह ने दियत को जिक्र नहीं फरमाया। तो कहते हैं जाल तहरीर कुल्लल मूजबी, मूजब का माना है हुक्म और मुक्तजा, तो जाल तहरीर कुल्लल मूजबी, तो अल्लाह ताला ने आजाद करने को इस कत्ल का पूरा मुक्तजा करार दिया रुजूअन इला हर्फिल फाई, हर्फे फा की तरफ रुजू करते हुए कि इस पर फा दाखिल है। मालूम हुआ इस कत्ल का यही हुक्म है भाई, इसकी यही जजा है। औ इलाकों नहीं कुल्लल मजकूरी, यह इस बात की तरफ रुजू करते हुए कि यही सारा मजकूर है और कुछ अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया। फयंतफी गैरुहु, तो इसके अलावा और चीजें मुंतफी हो जाएंगी यानी किसास या दियत नहीं आ सकती। वली अन्नल इस्मतल मुअस्सिमत बिल आदमियति, यहां से अब साहिब हिदाया बयान फरमाने लगे हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक इस्मत मुअस्सिमा असल थी और इस्मत मुतकव्विमा उसका वसफ, लेकिन हमारे नजदीक इस्मत मुअस्सिमा भी असल और इस्मत मुतकव्विमा भी असल। इस्मत मुअस्सिमा जो है वो आदमी होने की वजह से है। इस्मत मुअस्सिमा क्यों हासिल? आदमी होने की वजह से। यह दलील पीछे भी गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ बनाया है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं और उसको शरीय अहकाम का पाबंद किया है, और इंसान शरीय अहकाम पर तभी अमल कर सकता है जब वो बाकी रहे और जिंदा रहे, और जिंदा वो तभी रह सकता है जब उसके साथ तआरुस करना और उसे कत्ल करना हराम हो। तो लिहाजा इंसान को जो इस्मत मुअस्सिमा हासिल होती है वो आदमी होने की वजह से है क्योंकि वह मुकल्लफ है। वो आदमी होने की वजह से क्योंकि वो मुकल्लफ है। हां, अगर इस आदमी को कोई शर वाला आरिज पेश आ गया कि ये आदमी हरबी है, फिर इस सूरत में तआरुज हराम नहीं रहता, फिर इसको कत्ल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मुसलमान हो जाता है तो वो इसका शर चला गया, वो जो शर इसको आरिज हुआ था हरबी होने वाला, वो जो शर इसको आरिज था बतौर हरबी के, वो शर चला गया। जब शर चला गया तो आदमी होने के एतबार से इसको इस्मत मुअस्सिमा वापस हासिल हो गई। भाई तो कहते हैं वली अन्नल इस्मत अल मुअस्सिमा बिल आदमीयति, और इसलिए क्योंकि इस्मत मुअस्सिमा जो है वो आदमी होने की वजह से है, वो आदमी होने की वजह से है, इस्लाम की वजह से नहीं है हमारे नजदीक। तो कहते हैं वली अन्नल इस्मत अल मुअस्सिमा बिल आदमीयति, और इसलिए क्योंकि इस्मत मुअस्सिमा आदमी होने की वजह से है, ले अन्नल आदमीय खुलिका मुतहम्मिलन आबा तकलीफी, लिअन्नल आदमी या खुलिका, इसलिए क्योंकि आदमी को पैदा किया गया है मुतहम्मिलन इस हाल में कि ये उठाने वाला है आबाअत तकलीफी, तकलीफ के बोझों को। तकलीफ का माना है जिम्मेदार बनाना। इंसान क्या है? मुकल्लफ। मुकल्लफ का क्या माना? जिसको जिम्मेदार बनाया गया हो। कल्लफा युकल्लिफु, तकलीफ का माना होता है दूसरे को जिम्मेदार बनाना। तो कहते हैं लिअन्नल आदमी या खुलिका, इसलिए क्योंकि आदमी को पैदा किया गया है मुतहम्मिलन आबाअत तकलीफी, इस हाल में कि ये उठाने वाला है जिम्मेदारियों के बोझों को। वल कियामु बिहा, और जिम्मेदारियों के बोझों को अदा करना बिहुर्मति तआरुजी, वो तआरुज के हराम होने से होगा। वो शरीयत पर तभी अमल कर सकता है जब उसको जिंदा रहने दिया जाए और उसके साथ तआरुज हराम करार दिया जाए। तर्जमा समझ में आ रहा है? वल कियामु बिहा, हा जमीर राजे है, ये जो पीछे आया आबा उ तकलीफ, भाई तकलीफ के जो बोझ हैं, याद रखो आबा जमा है इब उनकी, और इब उन कहते हैं बोझ को। आबा अ तकलीफ यानी तकलीफ के जो बोझ हैं। फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्नल आदमी या खुलिका, इसलिए क्योंकि आदमी को पैदा किया गया है मुतहम्मिलन आबा अ तकलीफ, इस हाल में कि वो जिम्मेदारियों के बोझों को उठाने वाला है। वल कियामु बिहा, और इन जिम्मेदारियों के बोझों को अदा करना बेहरमति तारुजी, तारुज के हराम होने के जरिए होगा। वल अमवाल ताबेअतुन लहा, और अमवाल इस आदमी होने के ताबे हैं। लहा जमीर राजे है आदमीयत को, ऊपर जो आदमीयत गुजरा था कि इस्मत मुअस्सिमा हासिल है आदमी होने की वजह से। वल अमवाल ताबेअतुन लहा, और अमवाल जो है वो इस आदमी होने के ताबे हैं, इसलिए क्योंकि इंसान को हाजत है। यह दलील भी पीछे गुजरी थी, इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, और मुकल्लफ जो है वो चीजों से फायदा उठाने का मोहताज है, और चीजों से फायदा उठाना तभी इसके लिए मुमकिन होगा जब इसके लिए माल की इस्मत और हिफाजत साबित की जाए। वरना तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं खलक लकुम मा फिल अर्ज जमीअ, कि जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह ने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। मालूम हुआ जमीन का हर माल जो है मुबाह है। तो ये आयत तकाजा करती है कि किसी को भी माल का मालिक नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए माल मुबाह होना चाहिए, लेकिन मुकल्लफ जो है यानी इंसान जो है वो इस माल से नफा उठाने का मोहताज है। अगर इसको माल का मालिक हम नहीं करार देंगे तो फिर तो जो भी आएगा वो इसका माल उठाकर ले जाएगा, तो ये माल से फायदा नहीं उठा सकेगा। तो जरूरत और हाजत की वजह से इस मुकल्लफ को इस माल का मालिक करार दिया गया। भाई बात समझ में आ गई। यह माना है वल अमवाल ताबेअतुन लहा, और ये जो माल हैं ये आदमी होने के ताबे हैं क्योंकि आदमी मोहताज है इनसे फायदा उठाने का। मालूम हुआ इस्मत मुअस्सिमा के अंदर जान असल है, और माल उसके ताबे है। जबकि आगे बताएंगे इस्मत मुतकविमा में इसके बरअक्स है, माल असल है और जान उसके ताबे है। तो कहते हैं अमल मुकविमतु, बाकी इस्मत मुतकविमा जो है फल असलु फी हल अमवालु, तो उसके अंदर माल असल है। लिअन्न तकव्वुमा युज़िनु बिजबरिल फाइति, लिअन्न तकव्वुमा, तकव्वुम का माना है कीमत वाला होना, लिअन्न तकव्वुमा इसलिए क्योंकि कीमत वाला होना युज़िनु ये खबर देता है बिजबरिल फाइति, फौत शुदा चीज की तलाफी की। भाई एक चीज कीमत वाली है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी को यह नुकसान दिया तो आपको तलाफी करना पड़ेगी। कोई चीज कीमत वाली है, इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी ने तलब कर दी तो उसको नुकसान पूरा करना पड़ेगा। तो यह माना है लिअन्न तकव्वुमा युज़िनु बिजबरिल फाइति, इसलिए क्योंकि कीमत वाला होना यह फौतशुदा चीज की तलाफी की खबर देता है। वज़ालिका फिल अमवाली दूना नुफूसी, और यह तलाफी जो है यह तो मालों के अंदर हो सकती है ना कि जानों के अंदर, क्योंकि माल एक दूसरे के मिसल होते हैं, जान एक दूसरे के मिसल नहीं है। देखो माल किसी का कोई जाया कर दे तो बदले में उसको भी माल देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई शख्स दूसरे को कत्ल कर दे तो क्या आपने कभी सुना है बदले में कहें चलो जी हमारी तरफ से ये एक आदमी आप ले लो? तवज्जो है, जान को जान के मिसल शुमार नहीं किया जाता, हां माल को माल के मिसल शुमार किया जाता है। तो कहते हैं कीमत वाला होना यह फौतशुदा चीज की तलाफी की खबर देता है। वज़ालिका फिल अमवाली दूना नुफूसी, और यह तलाफी मालों में हो सकती है ना कि नफ्सों में। लिअन्न मिन शर्तिहि तमासुला, इसलिए क्योंकि तलाफी की शर्त जो है तमासुल है, एक दूसरे के मिसल हो। जिस माल के जरिए तलाफी की जा रही है वह उस फौतशुदा माल के मिसल होना चाहिए। और आप जानते हैं कि कभी कभार एक चीज दूसरी के मिसल होती है सूरत के एतबार से भी और माना के एतबार से भी, और कभी एक चीज दूसरी के मिसल होती है सिर्फ माना के एतबार से। जैसे मसलन देखो, आप गाड़ी खरीदने गए, आपने माल दिया और गाड़ी खरीद ली। आप देखो माल जो रुपए आप दे रहे हैं यह सूरत के एतबार से गाड़ी के मिसल नहीं है, हां माना के एतबार से यह गाड़ी के मिसल है कि इनकी भी वही कीमत है जो गाड़ी की है भाई। और कभी कभार जो रिवर्स दिया जाता है वो सूरत और माना दोनों के एतबार से उसी चीज की तरह होता है। जैसे आप किसी को एक बोरी गंदुम देते हैं और उससे एक बोरी गंदुम ले लेते हैं, तो देखो दोनों तरफ से जो माल है वो सूरत के एतबार से भी एक जैसा और माना के एतबार से भी एक जैसा है भाई। या जैसे कोई शख्स किसी की गंदुम जाया कर दे तो बदले के अंदर उसी जैसी गंदुम उसको देनी पड़ेगी। तो देखो यहां पर ये जो गंदुम दे रहा है ये उस फौतशुदा गंदुम के मिसल है, सूरत के एतबार से भी उसी की तरह और माना यानी कीमत के एतबार से भी उसी की तरह। मालूम हुआ मिसल होना कभी सूरतन और मानन दोनों एतबार से होता है और कभी सिर्फ माना के एतबार से मिसल होता है, लेकिन यह माल के अंदर होता है जानों के अंदर नहीं। यह माना है वज़ालिका फिल अमवाली दूना नुफूसी, और यह तलाफी जो है मालों में होती है ना कि नफ्सों में। लिअन्न मिन शर्तिहि तमासुला, इसलिए क्योंकि तलाफी की शर्त में तमासुल है कि दोनों चीजें एक दूसरे के मिसल हों। वह हुआ फिल माल दूना नफ्सी, और तमासुल तो माल में होता है ना कि नफ्स में, माल एक दूसरे के मिसल होते हैं। फकानति नुफूसु ताबियातन, तो नफ्स जो है वह मालों के ताबे होंगे। इस्मत मुतकविमा में माल असल है और नफ्स उसके ताबे, मालूम हुआ दोनों इस्मतें असल हैं। इस्मत मुअस्सिमा जान में असल है और माल में ताबे, और इस्मत मुतकविमा माल में असल है और जान में ताबे है। तो कहते हैं फकानति नुफूसु ताबियातन, तो जाने जो है वो ताबे होंगी। सुम इस्मतुल मुकविमतु फिल अमवाली बिल इहराज बिद्दारी, और फिर इस्मत मुतकविमा मालों के अंदर दारुल इस्लाम में महफूज करने से होती है। भाई आप दारुल इस्लाम के अंदर कोई माल ले जाएं तो अब ये माल मासूम बन गया, माल क्या बन गया, माल मासूम बन गया। और इस्मत मुतकविमा में माल असल है और नफ्स उसके ताबे हैं, तो जब माल को दारुल इस्लाम में ले जाने से माल मासूम हो जाता है और उसको इस्मत मुतकविमा हासिल हो जाती है, तो इसी तरह जान भी जब दारुल इस्लाम के अंदर आएगी फिर ही उसको इस्मत मुतकविमा हासिल होगी। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं सुम्मल इस्मतुल मुकव्विमतु फिल अमवाल बिल इहराज बिद्दारी, फिर इस्मत मुकव्विमा जो है मालों के अंदर दारुल इस्लाम में महफूज करने से होती है। लिअन्नल इज्जत बिल मनाअति, इसलिए क्योंकि इज्जत जो है वो कुव्वत के जरिए होती है। इज्जत किसके जरिए है? कुव्वत। इज्जत से मुराद है किसी चीज का कीमती होना। भाई ये चीजें जो कीमती हैं ये इज्जत के एतबार से हैं, जितनी चीज ज्यादा इज्जत वाली है उतने ही उसकी कीमत भी ज्यादा है। और ये याद रखो ये कीमती होना ये कुव्वत के जरिए होगा। अगर आपके पास कुव्वत नहीं है फिर तो कोई भी आपका माल ले जाए तो फिर तो माल की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। भाई तो इज्जत किसके जरिए होती है? कुव्वत के जरिए होती है। तवज्जो है, जब कुव्वत हासिल होगी तो कोई दूसरे का माल नहीं ले सकेगा भाई। और कुव्वत हासिल नहीं है, माल लेके एक दूसरे का लेकर जाते हैं तो मालूम हुआ माल की कोई इज्जत और कीमत नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्नल इज्जत बिल मनाअति, इसलिए क्योंकि माल की जो इज्जत है यानी उसका कीमती होना जो है बिल मनाअति वो कुव्वत के जरिए होता है। फकज़ालिका फिन नुफूसी, तो इसी तरह नफ्सों में भी होगा। जब दारुल इस्लाम के अंदर माल ले जाया जाए तो मासूम हो जाता है, तो कोई नफ्स भी जब दारुल इस्लाम में आएगा तब उसको इस्मत मुतकव्विमा हासिल होगी। इल्ला अन्न शरअ असकत एतबार मनअतिल कफरा, यहां से एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि अगर चीज की कीमत कुव्वत के जरिए हासिल होती है फिर दारुल हर्ब के अंदर भी तो दारुल हर्ब वालों को कुव्वत हासिल है, तो वहां पर भी उनकी माल और जान को इस्मत मुतकव्विमा हासिल होनी चाहिए। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि हां वहां पर अगरचे उनको कुव्वत हासिल है लेकिन शरीयत ने उनकी कुव्वत को खत्म करने का हुक्म दिया है, उनसे जिहाद करने का हुक्म दिया है, लिहाजा इसलिए उनकी कुव्वत का कोई एतबार नहीं है। तो कहते हैं इल्ला अन्न शरअ असकता, मगर यह कि शरीयत ने साकित कर दिया है एतबार मनअतिल कफरती, कुफार की ताकत के एतबार करने को, शरीयत ने कुफार की ताकत के एतबार को साकित कर दिया है। लिमा अन्नहु औजब इबतालहा, इसलिए क्योंकि शरीयत ने वाजिब किया है उनकी कुव्वत को बातिल करने को कि उनसे जिहाद किया जाए और उनकी कुव्वत को खत्म किया जाए। वल मुर्तदु वल मुस्तामिनो, ये एक और एतराज का जवाब। एतराज ये कि मुस्तामिन जो यहां दारुल इस्लाम के अंदर आया है अमान लेकर, आपने कहा इसको अगर कोई कत्ल कर दे तो न किसास आता है और न दियत आती है, हालांकि दारुल इस्लाम के अंदर आकर इसको भी इस्मत मुतकव्विमा हासिल होनी चाहिए। और इसी तरह अगर कोई शख्स दारुल इस्लाम में मुर्तद हो जाता है तो उसको भी कोई कत्ल कर दे तो आप कहते हैं न किसास आएगा न दियत आएगी, हालांकि दारुल इस्लाम में तो जान को इस्मत मुतकव्विमा हासिल होती है। तो उसका भी जवाब देंगे कि यह जो हर्बी मुस्तामिन है इसने वापस जाना है दारुल हर्ब, और ये मुर्तद भी वही दारुल हर्ब भागकर जाना चाहता है। जब इनका इरादा ही वहां जाने का है तो तकदीरन ये अभी भी उन्हीं में शुमार होंगे, जब ये उन्हीं में शुमार हैं तो इनको इस्मत मुतकव्विमा हासिल नहीं, इनके कत्ल की वजह से न किसास आएगा और ना दियत आएगी। कहते हैं वल मुर्तदु वल मुस्तामिनु फी दारीना, और वो शख्स जो मुर्तद है और वो शख्स जो मुस्तामिन है, फी दारीना हमारे दार में, मिन अहली दारहिम हुक्मन, ये भी उन दारुल हर्ब वालों में से हैं हुक्म के एतबार से, लिकस्दिहिम अल इंतिकाल इलैहा, इस वजह से कि इनका इरादा है उनकी तरफ मुंतकिल होने का। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, वमन कतल मुस्लिमन खतअन ला वली लहू औ कतल हर्बियन दखल इलैना बि अमानिन फअस्लमा फद्दियतु अला आकिलतिहि लिल इमामि व अलैहिल कफारा। भाई सूरत मसला ये कि किसी शख्स ने दारुल इस्लाम के अंदर ऐसे मुसलमान को कत्ल कर दिया जिसका कोई वली नहीं है, या कोई हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम आया था और यहां वो मुसलमान हो गया और फिर इसको किसी ने कत्ल कर दिया, तो अब इस सूरत में याद रखो अगर वो कत्ले खता है तो कातिल की आकिला पर दियत आएगी। भाई इस आदमी जिसको कत्ल किया गया है इसका तो कोई वली ही नहीं है, कहते हैं इसकी दियत इमाम वसूल कर लेगा और फिर उसको बैतुल माल में जमा कर देगा और मुसलमानों के मसलहत के कामों में इसे खर्च किया जाएगा। तो कातिल पर दियत भी आएगी कत्ले खता में और कफारा भी आएगा भाई। और कत्ल का कफारा मैं पीछे बयान कर चुका हूं कि एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा। और फिर उसी आयत में आगे अल्लाह फरमाते हैं फमन लम यजिद फसियाम शहरैनी मुतताबिअैनी, कि जिसको मुसलमान गुलाम या बांदी मुयस्सर ना हो तो उसे दो माह के मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। तो अगर ये कत्ले खता था तो इसमें दियत भी देना पड़ेगी इस कातिल को और नीज इस पर कफारा भी आएगा। तो कहते हैं वमन कतल मुस्लिमन खतअन ला वली लहू, और जिसने गलती से ऐसे मुसलमान को कत्ल कर दिया जिसका कोई वली नहीं है, औ कतल हरबियन दखल इलैना बी अमान फा अस्लमा, या ऐसे हरबी को कत्ल कर दिया जो हमारे पास अमान लेकर आया था और फिर मुसलमान हो गया था, फदियतु अला आकिलतिही लिल इमामी, तो दियत जो है उस कातिल की आकिला पर होगी लिल इमामी इमाम के लिए। इमाम के लिए माना यह है कि इस दियत को लेने का हक इमाम का है, यह माना नहीं कि यह माल ही इमाम का होगा बल्कि यह माल बैतुल माल में जमा करवाया जाएगा, अलबत्ता लेने का हक वो इमाम का है भाई। ये माना है फदियतु अला आकिलतिही लिल इमामी, तो उस मकतूल की जो दियत है वो इस कातिल की आकिला पर होगी लिल इमामी इमाम के लिए, यानी उसे वसूल करने का हक इमाम का है। वह अलैहिल कफारतु, और उस कातिल पर कफारा भी होगा, लिअन्नहु कतला नफ्सन मासूमतन खतअन, इसलिए क्योंकि कातिल ने एक मासूम जान को गलती से कत्ल किया है। फयुअतबरु बिस्साइरिन नुफूसिल मासूमति, तो इसको कियास किया जाएगा बाकी मासूम जानों पर, बाकी मासूम जानों पर। और बाकी मासूम जानों में तो कत्ले खता के अंदर दियत और कफारा आता है, तो यहां भी दियत और कफारा आएगा। वह माना कौल ही लिल इमामी, और मतन के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का जो कौल आया लिल इमाम, इसका माना यह है कि अन्ना हक अल अख्ज़ लहू, कि उस दियत को लेने का हक इमाम का है, उस दियत को लेने का हक इमाम का है। लिअन्नहु ला वारिसा लहू, इसलिए क्योंकि उस मकतूल का कोई वारिस नहीं है। बात समझ में आ गई। तो साहिब हिदायत ने लिल इमाम का माना जिक्र किया कि इमाम को लेने का हक है, मालूम हुआ इमाम इसका मालिक नहीं, लेने का हक इमाम का है, अलबत्ता फिर बैतुल माल में जमा किया जाएगा इसको। वह इन काना आमदन, और अगर वो कत्ल जान बूझ कर था, फइन शा अल इमाम कतलहु व इन शा अखज़त दिया, ये सारा मतन है भाई। वह इन काना आमदन फइन शा अल इमाम कतलहु व इन शा अखज़त दिया, फइन शा अल इमाम कतलहु, तो अगर इमाम चाहे तो उस कातिल को कत्ल कर दे, व इन शा अखज़त दियता, और अगर इमाम चाहे तो दियत ले ले, इमाम चाहे तो उस कातिल को कत्ल कर दे और चाहे तो दियत ले ले। आगे साहिब हिदायत भी जिक्र फरमाएंगे कि कत्ले आमद के अंदर तो किसास आता है, और यहां इख्तियार जिक्र हो रहा है कि इमाम उसको किसास में कत्ल भी करवा सकता है और दियत भी ले सकता है। तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया के बतौर सुला के, बतौर सुला के, वरना तो कत्ले आमद में किसास ही आता है, लेकिन बतौर सुला के इमाम अगर दियत लेना चाहे तो दियत भी ले सकता है भाई। तो कहते हैं लिअन नफ्स मासूम मतुन, इसलिए क्योंकि यह जान मासूम और महफूज थी, वल कत्लु आमदुन, और यह कत्ल जान बूझ कर था, वल वली यु मालूमुन, और इस कत्ल का वली मालूम है भाई। कत्ल का वली कैसे मालूम है, इस मकतूल का तो कोई वली ही नहीं है। कहते हैं भाई वहुअल आम मतु अभी सुल्तानु, वो आम मुसलमान है या बादशाह है इस मकतूल का वली, जिसका कोई और वली नहीं, या आम मुसलमान या बादशाह इसका वली है। قال عليه الصلاه والسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلطان ولی یمن لا ولی له, کہ بادشاہ اس شخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو, وقوله, اور امام محمد رحمہ اللہ کا جو قول آیا متن میں, وان شاء اخذ الدیتا, بھائی متن میں آیا تھا, فان شاء الامام قتله وان شاء اخذ الدیتا, अब उसी का माना बयान कर रहे हैं कि बजाहिर इस कलाम से लगता है शायद इमाम को इख्तियार है चाहे वो कत्ल करवा दे और चाहे दियत ले ले। तो साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि नहीं, कत्ले आमद में किसास ही आता है, और ये जो दियत जिक्र की जा रही है ये बतौर सुला के है, कि अगर सुला के तौर पर वो दियत देने पर राजी है तो इमाम दियत भी ले सकता है।
तो कहते हैं वकौलुहु, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का जो कौल आया मतन में कि वह इन शाह अखज़त दिया था मानाहू, इस कौल का माना यह है कि बितरीक़ सुलह, के इमाम सुलह के तरीके पर दियत ले सकता है, लिअन्ना मूजबल आमदी, इसलिए क्योंकि कत्ल आमद का जो हुक्म है हुवल कवद ऐनन, वो ऐन कवद ही है। याद रखो कवद का माना भी किसास, कवद का माना भी किसास, तो हमारे नजदीक कत्ल आमद में किसास ही आता है, वहां किसास और दियत में इख्तियार नहीं होता। तो कहते हैं लिअन्ना मूजबल आमदी हुवल कवदु ऐनन, इसलिए क्योंकि कत्ल आमद का जो हुक्म है और जो मुक्तजा है हुवल कवदु ऐनन, वो ऐन कवद ही है, वहां इख्तियार नहीं होता बल्कि ऐन कवद यानी किसास ही आता है। वहाजा, और ये इस वजह से लिअन्ना दियत अनफाउ फी हाजिहिल मसअलति मिनल कवदी, और वहाजा और ये इस वजह से कि इमाम के लिए दियत देना भी जायज है, वो इस वजह से लिअन्ना दियत अनफाउ फी हाजिहिल मसअलति, इसलिए क्योंकि दियत ज्यादा नफे वाली है इस मसले के अंदर मीनल कवदी किसास के मुकाबले में, इस मसले में दियत जो है वो ज्यादा नफे वाली है किसास के मुकाबले में। फलिहादा कान लहू विलायतु सुल्ह अलल माली, लिहाजा इसीलिए इमाम को माल पर सुलह की विलायत भी हासिल होगी। फलैस लहू अन याफुआ, तो इमाम के लिए जायज नहीं है कि वो मुआफ कर दे। लिअन्नल हक लिल आम्मति, इसलिए क्योंकि ये आम मुसलमानों का हक है। वह विलायतुहु नजरियतुन, और इमाम की जो विलायत है वो शफकत वाली है, इमाम को तमाम मुसलमानों पर जो विलायत दी गई है वो शफकत की वजह से दी गई है कि ये मुसलमानों का ख्याल रखेगा, तो अगर ये उस कातिल को वैसे ही माफ कर देता है इसके अंदर तो मुसलमानों का कोई नफा नहीं, इसमें तो कोई शफकत नहीं है मुसलमानों पर, लिहाजा इसकी उसे इजाजत नहीं होगी। तो कहते हैं वह विलायतुहु नजरियतुन, और इमाम की विलायत जो है वो तो शफकत वाली है। वलैस मिनन नजरी, और शफकत में से नहीं है इस्कातु हक्किहिम मिन गैर इवज़िन, कि मुसलमानों का हक साकित कर दिया जाए बगैर किसी इवज के, मुसलमानों का हक बगैर किसी इवज के साकित कर दिया जाए, इसमें कोई शफकत वाली बात नहीं है, लिहाजा इमाम को इसकी विलायत नहीं होगी, वो कातिल को माफ नहीं कर सकता, उसे इख्तियार ही नहीं है इस बात का। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।